विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादे पाश्चातदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण मंदिर रानी बाग में कृष्ण गोपाल सूर्य और परिवार में 7 दिन के लिए श्रीमद भागवत का सत्संग रखा है और आप सब श्रद्धालु श्रवण के लिए पधारे हैं, आपका स्वागत है। और सूर्य परिवार का धन्यवाद करते हैं कि हमको भगवान की कथा कहने का और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और राधा कृष्ण मंदिर के जो भी पदाधिकारी और पुजारी हैं उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि सुंदर व्यवस्था भगवान की कथा कीर्तन का आयोजन मैं सहयोग के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के समान है भागवत व्यास देव की परिपक्व अवस्था में सारे वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है भागवत। कल जिनके लोगों को तत्काल कृष्ण भक्ति प्राप्त कराने वाला है श्रीमद् भागवत, तपस्या से पवित्र व्यास देव के हृदय में परम भागवत भक्ति के आचार्य नारद की प्रेरणा से प्रकट हुआ है ये भागवत। और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद धरती के ऊपर धर्म का मार्ग और लोगों को भगवान के प्रेम की का प्रसाद देने के लिए प्रकट हुआ है ये भागवत। तो आप भाग्यशाली इस भागवत का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने व्यास देव के हृदय में भागवत के प्रकट्यता की कथा को श्रवण वर्णन किया था। उससे पहले भागवत का महात्म्य कि भागवत इतना महान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भागवत का निरंतर पाठ करते हैं। भागवत इतना महान है कि भक्तों को तो बहुत सुलभ है लेकिन देवताओं के लिए ये दुर्लभ है। भागवत का अमृत देवताओं के अमृत से देवताओं का अमृत पीने के बाद क्षीण पुण्य है मृत्यु लोकम विशंति, जैसे पुण्य पूरे हुए वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन ये भागवत का अमृत धर्म का अमृत है, ये पीने वाला भगवान का नित्य पार्षद बन जाता है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कल इन प्रश्नों का उत्तर आ गया था कि भागवत व्यास देव के द्वारा नारद जी की प्रेरणा से बद्री का आश्रम में, जहाँ व्यास देव का आश्रम है समीप आश्रम नाम का, वहां व्यास देव ने भागवत को प्रकट किया और फिर अपने पुत्र सुखदेव को, जो तो पहले से ही ब्रह्मरात मतलब ब्रह्म में रत था, ब्रह्म में आनंद में मगन था, उसको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आकर्षित किया और उसने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। और तब प्रश्न तीसरा ये जिसका अब उत्तर देना है कि महाराज परीक्षक नव युवक थे, पूरे भूमंडल के सम्राट थे, एक छत्र राजा थे, तो फिर राजपाट क्यों छोड़ा, ब्राह्मण ने शराब क्यों दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में आज कथा को आगे शुरू करेंगे। यहां पहले स्कंद में ये बात ध्यान में देना चाहिए कि कथा सुनने और सुनाने वालों का तीन सुनने वाले और तीन सुनाने वाले हैं। पहले सूत्र गोस्वामी तीन अध्यायों में सूत्र गोस्वामी सुना रहा है और सनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कथा सुनना नहीं है, मुख्य उद्देश्य यज्ञ है। कथा को शाम को सुनते हैं, टाइम मिलता है इसलिए। दूसरा कथा सुनाने वाला नारद है और कथा सुनने वाला व्यास है। उनका भी उद्देश्य भागवत कथा सुनने का नहीं है, वो लोक कल्याण के लिए शास्त्र पूरे परिपूर्ण करने के बाद भी असंतुष्ट है, तो इसलिए वो मुख्य श्रोता नहीं हुए। अब आने वाले 12 अध्यायों में भागवत का जो मूल मुख्य श्रोता परीक्षित है उसकी महिमा का वर्णन है, जिसका जीवन में भागवत का श्रवण मुख्य उद्देश्य था, जो अपने राजपाट का परित्याग करके कोष पुत्र परिवार रानियों सबको छोड़ के गंगा जी के तट के ऊपर भागवत सुनने के लिए आया, उसकी महिमा का वर्णन है। तो उसकी महिमा के वर्णन में उनके तीन कुल की महाभागवत नारियों का पहले वर्णन है। ऐसी तीन पीढ़ी में जब माताएं होती हैं, उत्तरा उनकी अपनी माता, द्रौपदी उनकी दादी और फिर कुंती महारानी उनकी परदादी, तीन पीढ़ियों की ऐसे देवियों की भगवत भक्ति से परीक्षित जैसा पुत्र पैदा होता है जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। और फिर तीन पीढ़ियां उनके पितृकुल की उसके अंदर भीष्म पितामह का भगवान के सम्मुख भगवत धाम जाने का प्रसंग, युधिष्ठिर महाराज के राज की महानता, धृतराष्ट्र का भी उद्धार, ये सब वर्णन और श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करने कितना करते थे, इन तीनों सब परिवार के साथ उसका वर्णन है। वैसे पहले स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में दर्शन होता है कि पांडवों से कैसे प्रेम और स्नेह करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन न दूसरे स्कंद में, न तीसरे में, न चौथे, न पांचवें, न छठे, न सातवें, आठवें, नौवें के आखिर में भगवान का प्रकट है और दसवें स्कंद में भगवान का दर्शन। तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत की भूमिका है जिसके ऊपर भागवत सारा टीका हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है जिसका सभी आश्रय लेना चाहते हैं। और प्राय इस पहले और दूसरे स्कंद की कथा कहीं सुनने को मिलती नहीं, इसको सुनना सुनाना भागवत को ग्रहण करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए उस काल का वर्णन है कि जब इस परीक्षित का प्रकट्य का समय, भागवत किसी समय का अवतार का समय है। तो कथा ऐसे मोड़ लेती है कि महाभारत के युद्ध में 17 दिन पूरे हुए, 18वां दिन महाभारत के युद्ध का था। भीमसेन ने दुर्योधन को जांग तोड़ के गदा से गिरा दिया था और रात को भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों और सातिकों को कहा कि राजनीति ये कहती है जब विजय हो जाए तो राजा को अपना स्थान बदल के रहना चाहिए, बाकी सब शिविर में एक अक्षों ही सेना बची हुई थी। पांडवों का सेनापति दृष्टद्युम्न जीवित था और द्रौपदी के पांचों पुत्र पांचों पांडवों से जीवित थे। अब रात को तीन कौरवों की सेना में सिर्फ तीन योद्धा बचे थे, 17 अक्षों ने, 18 अक्षों ने सेना समाप्त हो चुकी, 11 अक्षों ने सेना समाप्त हो चुकी थी, केवल तीन बचे थे, अश्वस्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। ये तीनों दुर्योधन घायल के पास गए हैं जो गिरा हुआ है। अश्वस्थामा कहते हैं, दुर्योधन अपने बुढ़िया का सेनापति बनाया होता तो मेरे को तो मेरे पिता का प्रतिशोध लेना था, बदला लेना था। मेरे पिता को दृष्टद्युम्न ने मारा था और अभी तक पांडव जीवित हैं, आप मुझे सेनापति बनाता है तो मैं है पृथ्वी को पांडवों से शून्य कर दूंगा। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने कहा, अभी तक मैं जीवित हूं, मैं अपना खून, दुर्योधन ने अपने खून से अश्वस्थामा को तिलक लगा के कहा कि देखो अगर मैं जीवित रहा तो आधा राज आपको दूंगा, आधा मेरा रहेगा, और अगर मैं नहीं रहा तो पूरा राज आपका है और मेरे को अभी भी आपको सेनापति बनाने का अधिकार है कि मैं जीवित हूं। अब क्या हुआ, क्षत्रिय के खून से ब्राह्मण को तिलक लगा तो कैसा अधर्म और अन्याय होने जा रहा है। ये तीनों यहां से उठे, पेड़ के नीचे बैठ के विचार करने लगे कि अब युद्ध कैसे शुरू करें। पर तो इतनी देर में उस पेड़ के ऊपर कई हजार कौवे बैठे आराम कर रहे थे, एक कहीं से उल्लू आया और उल्लू ने सारे कौवों को गिराया और मार दिया। यहां दृष्ट यहां अश्वस्थामा ने उल्लू से प्रेरणा ली कि रात के सोए हुए सारे सैनिकों को मार देते। अब ये पहला क्षत्रिय के पुण्य के तिलक का प्रभाव हुआ कि उल्लू से शिक्षा ली। उल्लू ने हंस से शिक्षा लेते हैं लोग, ये उल्लू से शिक्षा लिया। दोनों को कहा चलो रात को उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, सबको समाप्त करने के। उन्होंने कहा ये अधर्म का युद्ध हम नहीं करेंगे, हम अधर्म का युद्ध नहीं करेंगे। अश्वस्थामा ने कहा आप अंदर नहीं जाइए, अगर भागते हुए कोई होगा तो आप मारना, नहीं तो अंदर जाके सोए हुए मैं मारूंगा। वो दोनों बाहर बाहर अपने धनुष बाण लेके खड़े हो गए और अश्वस्थामा ने शिविर में प्रवेश करके पहले तो दृष्टद्युम्न को बालों से घसीट के बहुत पीड़ा दे के मारा और फिर सोए हुए सारे सैनिकों को मारा जो भाग रहे थे। वो बाहर कृतवर्मा ने मारा और कृपाचार्य ने मारा। पांच पुत्र द्रौपदी को गर्दन काट के पांचों को साथ लेकर और अश्वस्थामा दुर्योधन को कहा देखो तुम्हारे शत्रु पांडवों के पांचों सर लेके आए। दुर्योधन कहता है इतना आसान पांडवों को मारना नहीं है, 17 दिन के युद्ध के अंदर मेरे सारे वीर कर्ण जैसा मेरा विश्वास पात्र भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए, मेरे को दिखाओ तो सही कौन से पांडव के सर है। और सरों को जैसे उसने हाथ से दबाया तो सर पिचक के बोला ये तो भीम का सर कैसे हो सकता है, जो मेरी गदा से नहीं टूट रहा था वो हाथ से कैसे टूटेगा। और ऐसे दुर्योधन को शराब था कि जिस दिन तुम्हारे को हर्ष भी होगा और फिर शोक होगा तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो खुशी इस बात की थी कि पांडव मरे और दुख इस बात का थी ये पांडव तो नहीं है, ये तो बच्चे पांडवों के मार के आया, लोग मेरा कल मुझे कहेंगे कि सोए हुए बच्चों को मरवा दिया, ये तो बहुत बड़ा। ऐसे दुर्योधन का तो प्राण निकल गया। और यहाँ अश्वस्थामा ने बच्चों की हत्या की, इसलिए अश्वस्थामा बहुत कमजोर हृदय हो गया और जान बचाने के लिए रथ के ऊपर चढ़ के भागने के लिए बनिया तो उन दोनों को छोड़ दिया। सुबह भगवान श्री कृष्ण पांच पांडवों और सात्विक के साथ जैसे वापस शिविर में आए तो द्रौपदी विलाप कर रही थी, पांचों पुत्रों के धड़ पड़े थे, सब नहीं थे। सारी एक अक्षौणी सेना रात को पड़े पड़े मार दी गई थी तो बहुत दुखी थी द्रौपदी। तो अर्जुन ने सांत्वना देने के लिए कहा कि पांचाली जिसने आपके पुत्रों के सर काटे हैं उसका सर मैं लाके दूंगा, उसके ऊपर खड़ी होकर अपने पुत्रों का तर्पण करना। और ऐसे कहके भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को तैयार करो और मेरे पुत्रों के हत्यारे को किसी भी हालत में आप उनको आज किसी वक्त पकड़ना है। और ये रथ अश्वस्थामा के रथ के पीछे भागा, अश्वस्थामा का रथ के घोड़े चप गए और अश्वस्थामा रथ से उतर के भागा। और जब देखा कि अब कोई सहारा बचने का नहीं है तो मरता क्या नहीं करता, उस वक्त उसने जल लेकर हाथ में ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र को रवाना किया। पहली प्रार्थना अभी अर्जुन की चार श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को है, हे श्री कृष्ण महायोगी आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप भक्तों का रक्षण करने वाले हैं, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे बताइए ये कौन सा तेज आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उस वक्त भगवान कहते हैं अर्जुन ये अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र है, तुम अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करो, इस ब्रह्मास्त्र को वहीं रोक दो। और अर्जुन ने जब ऐसे किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और इतना पूरे विश्व के अंदर विस्फोट होने लगा कि विश्व विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर अपने अपना स्तर वापस ले लो ये तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। उस वक्त अश्वस्थामा कहता है कि मुझे तो अस्त्र वापस लेना आता नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगा था मुझे तो चलाया क्यों। तब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अर्जुन तुम दोनों अस्त्रों को अब वापस ले लो। अर्जुन ने दोनों अस्त्र वापस ले लिए, अश्वस्थामा को गले में रस्सा बांधा। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते कि देखें तो पुत्रों के वध के बाद इसको अपने धर्म का अभी तक धर्म के ऊपर टिका है कि नहीं, मैं इसको पूरे को उठा के क्यों ले चल रहे हो, तुमने तो अपनी पत्नी को कहा था इसका सर काट के आऊंगे तो इसका सर काट लो ना, धर क्यों उठा के रख के ऊपर काट भी चलते हो, काटो इसका सर, पकड़ लिया तो मार दो। अर्जुन ने कहा नहीं श्री कृष्ण, इसको ले चलते हैं जैसे महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी मर्यादा से करेंगे वैसे करेंगे, मैं इसको नहीं मारूंगा। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा में सफल हुआ कि क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता, नहीं करनी चाहिए अस्त्र से शस्त्र से। और अर्जुन ऐसी स्थिति में धर्म के ऊपर स्थिर रहा, और उसके बाद उस हत्यारे को जब घर में लेके आए हैं, उस वक्त द्रौपदी ने देख के कहा इसको खोल दो, इसको खोल दो, ब्राह्मण का पुत्र है, इसको ऐसी दुर्गति करके क्यों आए। सभी आश्चर्य से देख रहे हैं जिसके पुत्र मारे गए हैं वो इसको छोड़ने के लिए कह रही है। और फिर द्रौपदी ने कहा ये आपके गुरु का पुत्र है जिससे आपने सारी शिक्षा ली है, और गुरु अपने पुत्र के रूप में, पिता अपने पुत्र के रूप में धरती के ऊपर बचता है रहता है, तो आपने इसका ऐसा तिरस्कार क्यों किया। और फिर कहा मेरे पुत्र मरे हैं, मैं उस दुख को जानती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके मरने से इसकी माँ कृपी को वो दुख हो, मैं अपने दुख का मैं जानती हूँ, मैं इसकी माँ को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। और फिर कहा मेरे तो आप पांच पति जीवित हो, उस कीर्ति का पति महाराज द्रोणाचार्य आपके गुरु भी तो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो आप तो अगर क्षत्रिय ऐसा अधर्म करोगे तो फिर धर्म किसके पास जाएगा। द्रौपदी ने जो ये कारण बताया है सब आश्चर्यचकित हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है। नकुल सहदेव ने कहा ठीक कहे, उसको भीम कहता है ये भावुक स्त्री की बात को मत सुनो, ये बड़ा हत्यारा है, गुरु द्रोही है, और इसका ये अधर्म का कार्य किया है, सोए हुए बच्चों का हत्यारा है, इसको मार देना चाहिए। अब भगवान अर्जुन जरा परेशान हो गया कि क्या करना चाहिए, कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो। तो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन शास्त्र वेद में मैंने लिखा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और ये भी हमने शास्त्र का नियम बनाया है कि आतिताई को दंड देना चाहिए। आतिताई वो है जो किसी के घर को आग लगाए, किसी की स्त्री को भगा के जाए, किसी का मान चुरा के जाए, बगैर अस्त्र शस्त्र किसी के ऊपर आक्रमण करे, ये किसी को विष दे दे, और ये सारे काम दुर्योधन ने किए थे, और ये सब उनके साथी थे। अब अर्जुन तुम वो करो जिससे मैं भी प्रसन्न हो जाऊं, दुर्योधन को युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो, और द्रौपदी की इच्छा को पूरी करो। तो अर्जुन एकदम समझ गया, भगवान कहते हैं ब्राह्मण को जान से नहीं मारना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को अपमान करना, उसका धन छीन लेना, उसको मृत्यु से निजाता है। तो उस वक्त अर्जुन ने अश्वस्थामा के जन्म के साथ एक मणि थी जिसके ऊपर उसको बड़ा गौरव था, वो मणि निकाल लिया और उसको झुके देके आधे बाल काट कर और अपमानित करके शिवर से बाहर निकाल। इसके बाद सारे कौरव कुल की स्त्रियां गंगा जी के तट के ऊपर अपने वीर गति प्राप्त पति पुत्र भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे स्त्रियां और कुछ पुरुषों ये सब गंगा जी के तट पे गए। हरेक ने अपने अपने स्वजन का नाम लेकर तर्पण किया और सभी रो भी रहे थे। यहाँ गांधारी भी थी, धृतराष्ट्र भी था, कुंती भी थी, द्रौपदी भी थी। तो आधे पानी में गंगा जी के बीच में महाराज युधिष्ठिर अपने पुत्रों को और अपने संबंधियों को तर्पण करना था, तो कुंती उसके निकट में जाके कह दिए बेटा एक अंजलि जल की करण को भी दे दो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं माता करण से हमारा क्या लेना देना, वो तो हमारे शत्रु थे, उसको माँ अंजलि कैसे दो। बोला बेटा करण तुम्हारा बड़ा भाई था। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं माता ये बात आपने छुपा के इतना बड़ा महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध करा दिया, ये मुझे पहले पता होता तो राज का अधिकारी वो था, मैं नहीं था। और ये बात श्री कृष्ण को जब कही थी कर्ण ने, तो कर्ण ने कहा कि मैं मानता हूं आप मत बताना पांच मिनट को, अगर उनको पता लग जाएगा तो वो राज मुझे देंगे और मैं दुर्योधन के इतना ऋणी हूं कि मैं वो राज दुर्योधन को दे दूंगा, फिर आपके धर्म स्थापना का काम पूरा नहीं होगा। लेकिन आज युधिष्ठिर महाराज ने कर्ण को तर्पण तो किया, लेकिन एक धर्मराज के मुख से नारी के लिए श्राप निकल पड़ा कि माता मैं कहता हूं आज के बाद कोई चीज छुपा नहीं पाएंगी स्त्रियां अपने हृदय में, क्योंकि इसके आपके एक छुपाने के कारण इतना बड़ा अहित तो हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया महाराज युधिष्ठिर, मैं वापस हस्तिनापुर जाना चाहता, हस्तिनापुर से अब मैं वापस द्वारका जाऊंगा और सबसे द्रौपदी से भी विदा लिया, सुभद्रा बहन से विदा लिया, कुंती महारानी से विदा लिया और भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर चढ़े हैं और सातकी खड़ा है रूप भर, अर्जुन पांडव पांचों उनके वाम भाग में खड़े हैं और रथ निकलने के लिए तैयार है। अभी मैनुष के बाहर हस्तिनापुर के गेट की तरफ जा रहा है जो महानगर का द्वार है। ऐसे विदाई के वेले अचानक विधवा उत्तरा भागती हुई सफेद साड़ी में कहती है, हे कृष्ण कृष्ण महायोगी पाही मां पाही मां, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। सब आश्चर्य से देखते हैं, ये विदाई का समय है, इसका भक्त विधवा का आना, ये तो अब सपन है, कैसे आ गई, क्यों आ गई। लेकिन उसी ने किसी का ध्यान नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के कहती मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे देखा तो कहा कि मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो अपने पति के साथ सती हो गई होती, लेकिन मेरे उदर में आपके भक्ति के पांडवों का अंतिम अंश है और कोई आज का गोला इसको जलाने के लिए आ रहा है, आप इसकी रक्षा कीजिए, अपने भक्ति के अंश पांडवों के वंश की रक्षा कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण तजी हो गए और उसी वक्त पांच और ब्रह्मास्त्र पांडु की ओर आ रहे थे और पांडु को पता भी नहीं था क्या है। श्री कृष्ण भगवान एकदम समझ गए कि अश्वस्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए एक अस्त्र उत्तरा के उदर में अभिमन्यु के अंतिम अंश के विनाश के लिए और पांच अस्त्र पांडवों को पृथ्वी पांडु पुत्र शून्य करने के लिए रवाना की है। अब भगवान श्री कृष्ण अधीर हो गए, बैठने देखने के तो रथ के ऊपर बैठे थे लेकिन उत्तरा के हृदय से परमात्मा के रूप में उतर के उसके उदर में चल गए। उदर में जाकर उन्होंने अपनी गदा को तेज चलाया, चक्र को तेज चलाया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी और सामने उसी वक्त पांडवों के बगैर प्रार्थना किए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और पांडवों की रक्षा कर दी। यहाँ श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने का वचन किया था, भीष्म पितामह के तो वचन के लिए तो रथ का पहिया उठाया था, रथ का पहिया कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कहलाता, लेकिन आज भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया पांडवों की रक्षा के लिए, अपने वचन को तोड़ा इसलिए कि लोग मुझे कहें कि बहुत बड़ा नियम पालन वाले करने वाला, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं भक्त वत्सल कहने में खुशी महसूस करता हूं, कोई कहे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं तो भक्तों का रक्षक हूं और मैं सुदर्शन चक्र उठा ही लिया और मैंने पांडु की रक्षा की। तो ये भगवान अपने आप को भक्त वत्सल कहने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं, कोई उसको कहे कि मर्यादा का पालन नहीं करते, नहीं करता हूं मेरी मर्जी, मेरे मर्यादा करने न करने से क्या आपको क्या लेना, मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए भीष्म पितामह आगे प्रार्थना में कहेंगे कि अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण आपने अपना कुटुंब मान लिया था और कुटुंब के भरण पोषण करने के लिए आदमी कूट रीति से कुछ भी करता है, उल्टा सीधा कुछ भी करके अपने परिवार को पालना पड़ता है, उसको कुटुंब बोलते हैं। तो आपने तो अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था, और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और भगवान ने ऐसे कई ऐसे लोगों के ऊपर कार्य किया जो जो सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए था, लेकिन करके दिखाया। लेकिन अंतर यह है कि उनके हृदय में किसी से द्वेष नहीं था। उनके इन कामों को कोई बुरा इसलिए नहीं कहता है कि उन्होंने सबके हित के लिए किया, धर्म की स्थापना के लिए किया, भक्तों के रक्षण के लिए किया, असुरों के संहार के लिए किया। इसलिए इनके किसी भी काम को दोषित नहीं ठहराया जाता, क्योंकि उनका पक्षपात किसी से है नहीं। यहां तक भीष्म पितामह कहते हैं, आपके इस युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा लाभ तो कौरव सेना को हुआ, जिन्होंने आपका दर्शन किया और प्राण त्यागे, उनका तो भला ही हो गया। पांडव की सेना तो आपके पीछे थी, उनको क्या मिला? आपका दर्शन तो कौरवों को मिला, तो ये तो कौरवों को ज्यादा हुआ। और किसी और ने किसी को नहीं मारा, आपने तो अपनी तिरछी चितवन से सबका प्राण हरण कर लिया और उद्धार सबका कर दिया। वैसे ये कहीं और मरते तो पता नहीं कर्मों से कहां जाते हैं, लेकिन आपके दृष्टि से इनका वीर गति को प्राप्त युद्ध भूमि में होना, यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है, ऐसे इनका तो उद्धार ही हो गया। और ऐसा भी महाभारत में लिखा है कि परीक्षित का शरीर तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल ही गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा की कि इस महाभारत के महान भयंकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया है, तो ये मेरा भक्त पांडु कुल का अंश जीवित हो जाए। और उनका शरीर फिर वापस जीवित हो गया। इसका मतलब भगवान ने किसी से पक्षपात नहीं किया था। अर्जुन के रथ के साथी बनने के बाद भी हित सबका ही बराबर कर दिया था। जो भी वहां वीर भगति को प्राप्त हुए, उन सब की सदगति हुई। ऐसे लंका के युद्ध में रावण के उद्धार के बाद जब विजय हो गई, तो आकाश में सब देवता आए और ऊपर से देवता भगवान श्री रामचंद्र को कहने लगे कि आप साक्षात भगवान हैं, मानव लीला तो केवल रावण के वध के लिए और हमारे हित के लिए कर रहे थे, अब आप सीता की परीक्षा क्यों दे रहे हैं? वो तो नित्य आपके अंतरंग शक्ति है आपकी, और वैसे हम देवता हैं, जब प्रकट हो जाते हैं तो हमको आशीर्वाद देना है, अब आप हमसे कुछ मांग लीजिए। इंद्र ने ऐसे जब कहा तो भगवान रामचंद्र ने पहला आशीर्वाद ये मांगा कि ये सारे राक्षस तो मेरे सामने खड़े थे युद्ध में, इन्होंने तो मेरा दर्शन किया और इनके प्राण त्यागे, इनका तो हित हो गया, लेकिन ये वानर मेरे पीछे थे, ये मेरा दर्शन नहीं कर पाए और असुर ने इनको मारा है, आप इन सबको जीवित कर दीजिए। तो इंद्र ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। और एक और वरदान मांग लो, तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, इन वानरों ने मेरे लिए प्राणों की आहुति लगा के समुद्र पार युद्ध के लिए आए हैं। अब जहां भी रहे, जिस वन प्रदेश में रहे, जिस पहाड़ पर्वत गिरी पे रहे, सब जगह पानी के झरने और फल फूलों के वृक्ष हो, और इन्हीं को कभी किसी चीज का अभाव नहीं हो। तो ये दो भगवान रामचंद्र ने वरदान वानरों के लिए। और यहाँ भी महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने किसी का पक्षपात नहीं किया। वो तो अपने उसी उद्देश्य को, धर्म को स्थापन करना है, अधर्म का विनाश करना है, दुष्टों का नाश होगा और भक्तों की रक्षा होगी, ये उनका सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को पूरा किया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे।
इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण अभी रथ के ऊपर ही बैठे हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भैया अब तो अब सुकन बहुत हो गए, आज मत जाइए, कुछ देर और रुक जाइए। और तब कुंती महारानी आगे आके कहती है, हे पंकज नाभ, हे कम पंकज नयन, हे कम पंकज मालिनी, हे कम पंकज चरण कमल आपके मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा कि हुआ ये क्या कह रही है, मेरे को आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम करती हैं, आप बड़ी है। कहती है कि नहीं नहीं मैं स्त्री हूं, कैसे आपको जान सकती हूँ, आप तो बड़े बड़े महर्षि परमहंस भी आपको जानने में समर्थ नहीं होते हैं, मैं आपकी हमारे ऊपर कृपा जो है उसको मैं जानती हूँ, कहा आप मेरे आप एक ही नाथ हैं, अकेले आप हमारे नाथ हैं, अनाथ हम कभी नहीं रहे, आप द्वारका नाथ हमारे नाथ हैं। और कहती है आपके अवतार के लोग तो कई कारण बताते हैं कि यदुवंश में आए हैं धर्म का स्थापना, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप तो भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, भक्ति का धर्म सिखाने परमहंसों को आपका आने का उद्देश्य तो ये है मुख्य है, और आपने कैसे हमारी रक्षा की मैं जानता हूँ, भीम को ऋष से बचाया, लक्षाग्रह से हमको बचाया, हमारी पुत्र वधु की सभा के अंदर लजा बचाई और इतने बड़े महाभयंकर युद्ध में से हमारे पांचों पांडवों को सुरक्षित आपने बचा लिया है। श्री कृष्ण आपको पाना किसी बड़े धनवान के लिए संभव नहीं है, किसी बड़े विद्वान के लिए संभव नहीं है, किसी बड़े सुंदर के लिए संभव नहीं है किसी, लेकिन जो जो आपको ही सब कुछ अपना धन मानते हैं उनको सरलता से प्राप्त हो सकते हो। और फिर एक श्लोक में भगवान की प्राप्ति का वर्णन करते हुए कुंती महारानी कहती है, श्रवण गायन गणन, अभी कोई भाग्य से भगवान की कथा सुने गाए या उसको गुनगुनाए अभी क्षण बाहर समय तो तत्काल भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। एक श्लोक में कुंती महारानी भगवान की प्राप्ति का सर्व साधन बता रही है कि कथा सुननी चाहिए, कोई सुनाने वाला हो और कोई सुनने वाला हो तो उनको गा गा कर सुनानी चाहिए, दोनों नहीं है तो जो कुछ सुना है उसको गुनगुनाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और फिर कुंती महारानी कहते हैं, इससे तो अच्छा वो दुख थे जो आ रहे थे, वो विपत्तियां अच्छी थी जब आती थी तो आपकी याद आती थी और आप आ जाते थे, आज हमको राज तिलक पुत्र को मिला है, हमको राज मिला है और आपसे जुदाई हो रही है, इसलिए इस राज से वो विपत्तियां अच्छी। ऐसी प्रार्थना इस धरती के ऊपर इससे पहले किसी ने नहीं की है, जो दुख को मांग रहे वो बार बार दुख आए, जिन दुखों में आपका दर्शन होता था और दुख विनाश हो जाते थे, अब ये सुख को क्या करें कि आपसे जुदा होना पड़ता है। दुख दारू सुख रोग भया, ये शब्द कुंती महारानी का अनुवाद पंजाबी में किया हुआ है गुरबाणी में, दुख दारू सुख रोग भया, तो क्या कुंती महारानी दुख मांग रही है, नहीं वो भगवान का दर्शन मांग रही है, लेकिन दर्शन के लिए परीक्षा में जब बैठना पड़ता है और परीक्षा में कठोर कठिनाइयां आती हैं, इसलिए कुंती महारानी दुख नहीं मांग रही है, दर्शन मांग रही है, लेकिन दर्शन के लिए जो कठिनाई है वो उसको अच्छी लग रही है, और एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर भव रोग का दर्शन नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर कभी आने की वो आने का कोई कारण ही नहीं बन जाता है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है कि फिर कभी भव रोग नहीं होगा। और फिर कुंती महारानी कहती है, मुझे कुछ लेना नहीं है, ना मुझे यादवों से लेना है, ना पांडवों से लेना है। तो भगवान ने कहा, मैं भी तो यादव हूं। बोले नहीं नहीं मेरी वृत्ति आपके तरफ ऐसे जाए जैसे गंगा गंगोत्री से उतर के वो गंगा सागर तक बिना रुकावट के जाती है, ऐसे मेरी वृत्ति, मेरा धारणा और मेरा ध्यान आपकी ओर सदा बना रहे। भगवान कुंती महारानी की प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान अपने घर जाने से प्रोग्राम कैंसिल करके रुक गए, हस्तिनापुर में रुक गए। अब वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो जब वो मोह में पड़ गया महाभारत के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, तो भगवद गीता का उपदेश तो देकर उसको मोह से मुक्त कर दिया। अब युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर महाराज मोहित हो गए, बोला मेरे कारण कितने बहनों ने भाई गंवाए, पतियों ने पत्नी गंवाए, पति गंवाए, माताओं ने पुत्र गंवाए, मैं इतने बड़े विनाश का कारण हूं। तो धौम्य ऋषि उनका अपना गुरु जी फिर व्यास देव समझाने लगे कि नहीं नहीं महाराज, राजा का तो धर्म है, धर्म का युग, बोल मैं राजा तो नहीं था, वो तो दुर्योधन राजा था, तो मेरे को काय के लिए राजा बोलते हो, मेरे कारण इस राज की लालच में मैंने इतना बड़ा अन्याय का कार्य करके महाभारत के अंदर असंख्य प्राणी की हत्या का मैं कारण हूँ, कहा तो यज्ञ करने से हत्याओं का पाप मिट जाएगा। बोला ऐसे शराब के बर्तन के साथ को शराब से धोने से थोड़ी साफ हो जाएगी, मिट्टी के अंदर को मिट्टी को मिट्टी से धोने से साफ नहीं होता है, ये ठीक नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे और मानने को तैयार नहीं है, तो क्या भगवान उसको समझा नहीं पाते? नहीं, भगवान असल में बाहर से कह रहे हैं युधिष्ठिर मान जाओ, लेकिन अंदर जो हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो कहते हैं तुम किसी की बात मत मानो। क्यों? भगवान कभी श्रेय स्वयं नहीं देते हैं, वो अपना श्रेय हमें भक्तों को देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की कुछ इच्छा ऐसी है कि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश में भीष्म पितामह से मिलाऊंगा। तो रात को युधिष्ठिर महाराज को आराम तो है नहीं, तो देखा कि जाके देखो भगवान श्री कृष्ण जब जाग रहे हैं तो पूछू कि मेरी इस शंका, ये मेरे इन दुख का क्या दारू है, इलाज क्या है? देखा तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं। ये गोविंद आप किसका ध्यान करते हैं? संसार में सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं युधिष्ठिर भीष्म पितामह, अब उत्तरायण आ रहा है, प्राण त्यागने की तैयारी कर रहा है और वो मेरे को याद कर रहा है, जो मुझे याद करता है उसको मैं याद करता हूँ। अब ऐसे करो कल सुबह तैयारी करो, हम चलते हैं कुरुक्षेत्र में उस स्थान पे जहाँ भीष्म सर सैया के ऊपर प्रतीक्षा कर रहा है उत्तरायण। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के ताज को पहन के, मुकुट को पहन के और सोने के रथ के ऊपर सज धज के पांचों भाइयों के साथ ऐसा वैभव के साथ चले कि जिसको देख के भीष्म पितामह संतुष्ट और तृप्त हो जाए। और उसने जो अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक मैं रक्षा करूंगा, उसको संतुष्टि होनी चाहिए। तो भगवान ने इस तरीके से पांडवों को तैयार किया, गुरुजनों को साथ लिया और श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हैं, अर्जुन साथ में है और ये सारा पांडवों का काफिला भी कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हुआ। अब ये समाचार भीष्म पितामह प्राण त्यागने जा रहे हैं, ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और इतना तीव्र गति से फैल गया कि जो ऋषि सत्यतप लोक में, जन लोक में, ऊपर के लोक में जो ऋषि रहते हैं वो ऋषि वहां से नीचे धरती के ऊपर कुरुक्षेत्र में आने लगे। धौम्य आया, पराशर आया, गौतम आया, अत्रि आया, कणाद आया, परशुराम भगवान रेणुकासुर अपने शिशु के साथ आए, वयासकी योगे सुखदेव महाराज, ये सब लोग सारे ऋषि आ गए और भीष्म पितामह के सीधे तरफ आके बैठ गए। भीष्म पितामह ने यथा उचित सबको और इतनी देर में पांडव आके भीष्म पितामह के लेफ्ट साइड में खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण चरण के पास खड़े हो गए और भीष्म पितामह ने मूल के युधिष्ठिर महाराज की ओर देखा और मुस्कुरा के बड़े प्रसन्न हो गए। हस्तिनापुर के सिंहासन के ताज को उनके सर के ऊपर मुकुट देखा, पांडु को देखकर प्रसन्न हो गए और पूछा श्री कृष्ण कहाँ। तब तक अर्जुन ने इशारा किया, भगवान ने श्री कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े थे, न सीधे तरफ थे न उल्टे तरफ थे, और भगवान श्री कृष्ण ने अंत आंखों में भीष्म पितामह को कहा कि ये आपका पोता राज नहीं कर रहा है, इसको कुछ समझाओ। और यहाँ लिखा है कि इतनी सारी पीड़ा में एक इंच भी शरीर का नहीं था जिसमें बाण लगा हुआ न हो, लेकिन फिर भी लग रहा था कोई देवता आकाश से धरती पे गिरा हो। इसका मतलब उसको कोई पीड़ा नहीं, दुख नहीं था। और इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि भगवान का स्मरण कैसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। बाण का इंच इंच और शरीर का इंच इंच बाण से बिंधा हुआ है, कोई साथ में नहीं है, अकेले है, लेकिन भगवान का ध्यान ऐसी स्थिति में भी हो सकता है। तो कैसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया जा सकता है। कोई कहे कि मुझे अच्छा स्थान मिलेगा, सुविधा मिलेगा, तब मैं भगवान का भजन करूंगा, वो तो और भजन बिगाड़ देगा, सुविधाएं भजन बढ़ाएगा नहीं। और ये ऐसी और ये पहला ऐसा महाजन है भीष्म पितामह, ऐसा महाभागवत है, सोए सोए प्रवचन की बड़े से बड़ा सोते हुए प्रवचन किया है उन्होंने, लंबा सा प्रवचन उनका है। भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि डाली तो उनका सब दर्द समाप्त हो गया। ये अमृत की दृष्टि का इतना आश्चर्यजनक कमाल हुआ कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर की ओर देख के कहते हैं, धर्मराज, एक तो आप स्वयं धर्मराज, फिर आप पांचों पांडव धर्म के ऊपर चलने वाले, ब्राह्मणों का तो सदा आपने सेवा की है, आशीर्वाद प्राप्त किया है, और ये भगवान श्री कृष्ण आपका तो सदा मित्र, साथी, सहयोगी, सलाहकार रहा है, फिर भी आपके जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आई? आपने कोई गलत काम किया नहीं, अपराध किया नहीं, पाप किया नहीं, धर्म के सबके भगवान आपके साथ, ब्राह्मण आपके साथ, फिर भी आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाई आई। बाहर सब बनवास, एक साथ अज्ञातवास, पत्नी का जो है अपमान, नक्शा कह, क्यों? महाराज युधिष्ठिर शांत रहे। भीष्म पितामह स्वयं बोलते हैं, ये सब काल है, काल बड़ा बलवान है, ये समय बड़ा बलवान है, काल के सामने किसी की दाद नहीं रहती, समय बहुत बलवान, समय बहुत बलवान है। कभी तारा की राज की रानी आज बनी है धोबियानी, धोए कपड़ा किना और हाथ सारे छालन से चिना, एक दिन तारा हरिश्चंद्र की महारानी थी और एक दिन धोबियानी बनी, ये समय बहुत बलवान है। कभी द्रौपदी थी पांच पांडवों की पटरानी और आज ब्यूटी पार्लर बनी है, सेंद्री बनी है विराट की रानी की, कहाँ महारानी और कहाँ ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार कराती है। समय बहुत बलवान है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी बरसात है और कभी कभी दिन है और कभी रात है, और समय बहुत बलवान है। और ये कहने के बाद भीष्म पितामह ने अपनी उंगली उठाई और श्री कृष्ण की ओर उंगली को ऐसे करके कहा, ये समय इसके इशारे से चलता है, ये काल का स्वामी है। और ऐसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालो अस्मि मैं काल, और ये इसके कारण सब कुछ हुआ है, इसने सब कुछ ये किया है। क्यों किया है? क्योंकि विश्व में आपको विख्यात करने के लिए किया है। जब पत्थर को काट के काट के काट के बहुत सुंदर मूर्ति बनाई जाती है तब उसकी पूजा होती है, पत्थर लाके लगाने से कोई पूजा नहीं करता। ऐसे जब तक जीवन में अच्छी तरह से कस कस के काटा नहीं होती है तब तक जीवन चमकता नहीं, सोने को जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक कुंदन नहीं पाता है, और भक्त जब तक साधन से अच्छी तरह से पक्के नहीं निकलता है तब तक उसकी भक्ति का निर्माण नहीं होता है। तो भगवान की इच्छा से वो इसलिए आपका तो द्वार का नाथ है, आप काय के लिए अनाथ कर रहे हो प्रजा को, आप प्रजा का पालन कीजिए। और उस वक्त समय उत्तरायण का आने लगा। जैसे उत्तरायण किसको कहते हैं, 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है, 6 महीने दक्षिणायन में होता है। तो 14 मार्च मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आता है। इसका मतलब भीष्म पितामह मकर संक्रांति के समय शरीर त्यागने का संकल्प कर रहे थे, एक उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह। ही वाज वेटिंग फॉर उत्तरायण। तो उत्तरायण का एक अर्थ कृष्ण भी है। वो कैसे है, जैसे नारायण किसको कहते हैं, नारायणम यशस नारायण, पानी में जो सोए क्षीर सागर में सोए उसको नारायण कहते हैं, तो जहां जो सोने की जगह है। ऐसे उत्तरा का उदर जिसका निवास रहा, उत्तर अयन उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किया परीक्षण की रक्षा करने के लिए, इसलिए श्री कृष्ण उत्तरायण है। उत्तर यस अयनम स उत्तरायण, जो उत्तरा के पेट में चले गए वो उत्तरायण, भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। अब श्री कृष्ण आ गए और उस वक्त भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखे कहा कि देखो, जो योगी को गति ध्यान करने से नहीं मिलती है, इसके दर्शन करने की, आज ये देखो मुझे दर्शन देने के लिए अपने आप आए हैं, और जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब तक ये मुस्कुराते हुए यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। इसका मतलब अभी उनके मरने का टाइम नहीं आया है और भगवान थोड़ी देर रुकेंगे। और उसके बाद जब ऐसे कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर अब दादा जाने वाला है, तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछ लो, समस्याओं का समाधान कर लो, इसके बाद ये तुम्हारे को अवसर नहीं मिलेगा। और युधिष्ठिर सोचने लगा ऐसी स्थिति में जहां बस जबान को और मुंह को छोड़ के बाकी सारा शरीर इसका पीड़ा में है, इससे कैसे प्रश्न पूछूं। लेकिन फिर कहा कि अब मौका तो ये इधर मिलेगा नहीं, अच्छा प्रभुपाद ने इधर लिखा है कि भगवान के भक्त प्रचार करने का मौका कभी गंवाते नहीं है। ऐसी स्थिति में भीष्म पितामह धर्म का उपदेश कर रहे थे और उनको कोई चिंता नहीं थी, और भीष्म पितामह से जब प्रश्न पूछा, नारी धर्म का प्रश्न पूछा, तो नारी धर्म की बहुत महानता बहुत सुंदर भीष्म पितामह ने बताई कि लज्जा नारी का सबसे बड़ा गहना है, और नारी के अंदर लज्जा है तो वो सबको अपने वश में कर सकती है, बड़ी शक्तिशाली होती है। वर्ण आश्रम धर्म का, राज धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, नीति धर्म, पूरा महाभारत का और जो शांति पर्व है माँ भीष्म पितामह के उपदेश से भरा हुआ है। और फिर लिखा है कि वो महाभागवत महावीर 400 साल से ऊपर भीष्म पितामह की उम्र हो चुकी थी, जो कभी कभी किसी युद्ध में हराया नहीं था और जो हमेशा विजयी हुआ, लाखों लोगों के साथ बात किया, 100 सैकड़ों लोगों को सलाह दी, आज सब जगह से अपने मन को हटाकर और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके अब वो 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। और एकादशी का दिन है और 11 श्लोक हैं और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। अब सब जगह से ध्यान हटा के कहते हैं, ये मेरी जो मति है, बुद्धि को मति तब कहते हैं जब वो कोई मत बना ले। जैसे मतदाता हमको कहते हैं ना, हम किसी एक आदमी को चुनते हैं तो कहते हैं मत दिया हमने, ऐसे जिस बुद्धि ने भगवान को चुन लिया है उसको मति कहते हैं। तो भीष्म कहता पिता में कहता है ये जो मेरी मति है कैसी है, इति मति उपकल्पिता वित्रषणा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, इसमें दुनिया में मेरी बुद्धि कहीं भटकी नहीं है। और भाव यहां ये है, भीष्म पितामह कहते हैं ये मेरी कवारी कन्या है, इसका अभी तक कहीं मन गया नहीं, किसी को इसने अपनाया नहीं है। अरे भीष्म पितामह, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो। बोला हाँ, ये मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री है। ऐसे बुद्धि को कहते हैं सती मती। मती का मतलब बुद्धि और सती का मतलब जिसने एक भगवान का वर्णन करे उसको सती मती कहते हैं। बुद्धि को वैसे भी स्त्री कहते हैं। आगे चौथे अध्याय में हम पुरंजन उपाख्यान में सुनेंगे कि पुरंजन ने बुद्धि के साथ बुद्धि पुरंजनी के साथ विवाह कर लिया। तो बुद्धि को वैसे भी स्त्री भागवत में कहा गया। भीष्म पितामह कहते हैं कि ये मेरी ही पुत्री मेरी कन्या, दुनिया के किसी भी लोक लालच में काम वासना में फंसी नहीं, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए महाराज। फिर कहते हैं कि इसका कोई पुत्र होता ही नहीं, वो तो घर जमाई बना लेता है अपने जमाई को, तो मेरी पुत्री को आप लीजिए और मेरे घर जमाई बन जाइए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ श्री कृष्ण आप मेरे हृदय में आके बैठ जाइए और बुद्धि के साथ रहिए। ये भगवत गीता का कृष्ण का उपदेश है कि मुझे बुद्धि में बिठाओ। मई बुद्धि में निवेश, मुझे बुद्धि में निवास कराओ। और भीष्म पितामह कहते हैं आओ मेरी बुद्धि में निवास करो, इस बुद्धि का आप वर्ण करो। और दूसरे श्लोक में जैसे लड़की को वर दिखाते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। तमाल वर्णम, तुम्हारा सावना सा चतुर्भुज रूप है और बिजली जैसे चमकती है ऐसा पीला पैगंबर फहरा रहा है और लाल लाल आंखें हैं। देखो तो अपनी बुद्धि को कहते हैं देखो तो कितना सुंदर तुम्हारे लिए वर मैंने देखा है। तो ये भीष्म पितामह की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को आंखों में भर के दिल में बिठाकर और पूजा कर रहे हैं। तो उस वक्त भगवान को हृदय में बसा लिया है। और फिर उनको वीर रस का विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि के अंदर आपने मेरे वचन की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया और टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा के जैसे शेर हाथी के ऊपर झपटता है ऐसे आप मेरे ऊपर झपके। उस वक्त पसीने से आपके घुंघराले भालू के ऊपर घोरू के चाकू की धूल और पसीना और मेरे तेज बाणों से आपके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया था, मैंने लटक रहा था, ये मेरे को आपका रूप याद आ रहा है। जैसे हम भगवान का सुंदर रूप का गोपियां कैसा रूप चाहती थी, बोला गोद होने का समय है और शाम को कृष्ण आपस लौटता है तो गाय के धूल से उड़ी हुई धूली और सारे दिन के परिश्रम के घुंघरालू बाणों को जो भूरे भूरे होते हैं उसके ऊपर ये धूली चमकती है पसीने के ऊपर और ये कृष्ण का मुख चंद्र हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे गोधूली का समय का मतलब शाम, जब गाय वापस आती है तब गोपियां घर से बाहर निकल के जहाँ धूली देखती हैं तो इसके पीछे कृष्ण आता हो। ऐसे वीर रस में कृष्ण को भीष्म पितामह भोरू के टापों से उठी हुई धूली से उसका जो सुंदर मुख बना है उसका दर्शन करें। और फिर कहते हैं उस युद्ध भूमि में आपका मित्र विजय सखा अर्जुन वो मोह में पड़ गया, उसको आपने गीता का ज्ञान दे के उसके मोह का विनाश निवारण कर दिया और अपनी दृष्टि से सारे ही कौरवों का आपने उद्धार कर दिया, सत गति दे दी। और ऐसे फिर विचार आया कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए विजय सखा ये अर्जुन का सखा है। अरे भगवान को सीधा बोलने से अच्छा है किसी भक्त के माध्यम से बोलोगे तो भगवान को अच्छा लगेगा, इसलिए भगवान को कहेंगे यशोदा नंदन 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 देवकी नंदन गोपीनाथ भगवान को अच्छा लगता है। ऐसे पार्थ सारथी कहते हैं हे कृष्ण अर्जुन के सखा कृष्ण, तो अर्जुन का नाम लेके कहते हैं मैं तो हो सकता है कि आपके विरुद्ध में लड़ाई भी किया लेकिन फिर भी अर्जुन के आप सखा हो इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। वैसे भीष्म पितामह ऐसा अद्भुत भगवान का भक्त है कि भगवान जिस पक्ष में है उसके विपक्ष में लड़ाई किया भगवान की इच्छा के लिए। अगर भीष्म पितामह कौरवों की तरफ नहीं होता तो ये युद्ध होता नहीं और भगवान का जो धर्म स्थापना का कार्य था वो पूरा नहीं होता। तो कभी कभी भक्तों को ऐसा काम करना पड़ता है जो समाज में अच्छा नहीं लगता है लेकिन भगवान को अच्छा लगता है। जैसे केकई ने 14 साल राम को वनवास दिया, राम को अच्छा लगा, दुनिया को अच्छा नहीं लगा। नहीं तो रामायण बनती कैसे, नहीं तो रावण का वध होता कैसे केकई अगर ये काम नहीं करती। तो ऐसे केकई भीष्म जैसे भक्त दुनिया में अपमान को सर के ऊपर उठाकर भी भगवान की मनोरथ पूरा करते और ऐसे भक्तों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये भक्त भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो हमारे को कभी भी इनके प्रति दोष दृष्टि नहीं देनी चाहिए। अब भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान की ब्रज के भक्त उनमें भी सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं और फिर एक श्लोक में 5 अध्याय जो गोपी गीत के वो एक ही श्लोक में गा लिए। एक श्लोक में 5 शब्द हैं गोपियों के प्रणय गीत से लेकर रास लीला से लेकर और भगवान की जुदाई में गोपी गीत से लेकर सारी 5 चीजें एक श्लोक में कह दी। और इसके बाद भीष्म पितामह ने खुली आंखों से भगवान के मुख मंडल का दर्शन करते हुए और अपने सांस को रोक लिया और उस वक्त आकाश से पुष्प बरसे और मृदंग करताल ढोल नगारे बजने लगे और सारे जितने ऋषि थे उन्होंने भगवान की परिक्रमा की और अपने अपने आश्रमों की तरफ चले गए। तब महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह उनका अंत्येष्टि क्रिया करा के और वहाँ से वापस आए और महाराज धृतराष्ट्र से अनुमति देकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन के ऊपर बैठे। यहाँ 9वां अध्याय पूरा होता है और 19 अध्यायों का पहला स्कंद है। अब आगे कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब सब काम हो गया, मेरे को द्वारका जाना है और अब भगवान द्वारका के लिए रवाने हुए हैं। तो पांडव उनके प्रेम के कारण उसके साथ आए हैं। फिर इसी इंद्रप्रस्थ के दैली के स्त्रियों ने अपने घरों के ऊपर कटहरों में खड़े होकर और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए जो गुणगान किया है ऐसा वेदों में भी ऋचा, वेदों के अस्तुतियों में ऐसी अस्तुति नहीं है जैसी हस्तिनापुर के रानियों ने भगवान श्री कृष्ण की। का क्या सौभाग्य उन द्वारका की महारानियों का है जिनको ऐसा कृष्ण चंद्रपति के रूप में सेवा करने का उनको सौभाग्य मिला है। आंखों का उत्सव तो ये है कि इसका दर्शन करने का मौका मिला है। ऊपर से ये प्रार्थना कर रही है और भगवान श्री कृष्ण को पांडव साथ जा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप रुक जाइए, आपको यहाँ इसलिए रुकना चाहिए कि नया राज है और अब आगे आप नहीं चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ सेना की टुकड़ी थी, वहाँ से 5 देश पंजाब, भगवान हस्तिनापुर से पंजाब आए और पंजाब से फिर मरुभूमि राजस्थान से होकर और गुजरात में प्रवेश किया, मध्य प्रदेश से होकर और आगे जाकर कच्छ में प्रवेश किया और जैसे ही द्वारका के किनारे अपने नगरी का, द्वारका का यह नाम लिखा है आनर खान, आनर्थ नगरी का नाम था, महाराज आनर्थ के नाम से उसको आनर देश कहते थे और दूसरा द्वारका का नाम था कुशस्त्री, महाराज कुश की राजधानी। तो अब द्वारका नाम कैसे हुआ ये तो भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका चले गए तो मथुरा और वृंदावन तो 12 किलोमीटर की दूरी है, रोज का समाचार आता जाता रहता था लेकिन अभी हजारों मील दूर चले गए जब वो समुद्र के बीच में द्वारका, तो कहा कि मेरे ब्रजवासी गोपियां अब मेरे को बहुत चिंतित होंगी। तो रात को भगवान ने योग माया से गोपियां सब को बुलाकर और एक बहुत बड़े हाल में किया। सुबह गोपियां उठी तो रास्ता नहीं मिले, पूछती है द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, द्वार 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 का, द्वार का, द्वार का, वो द्वार का तो वो नाम ही हो गया उसका द्वार, जबकि उसका पुराना नाम द्वारका नहीं है। भागवत में लिखा है आनर्त देश कुश स्थली, ये आनर्त महाराज सरयाति के पुत्र हैं और महाराज सरयाति सूर्य वंश के पुत्र, बहुत बड़े दस में से एक विवस्वत मनु का पुत्र है सरयाति महाराज। इसके बेटे आनर्त के लिए 100 योजन वैकुंठ का भगवान ने धरती के ऊपर उतारा, जिसको द्वारका कहते हैं। द्वारका धरती का टुकड़ा नहीं है, समुद्र से लिया हुआ है, और भगवान ने समुद्र से थोड़ी द्वारका के लिए अलग टुकड़ा लिया, तो समुद्र के बीच में भगवान के जाने के बाद वो समुद्र ने वापस ले लिया। ऐसे कुछ केरल के पास समुद्र से परशुराम ने टुकड़ा भार ले लिया था, वो भी समुद्र से क्लेम किया हुआ टुकड़ा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो अब कथा आती है कि भगवान ने जैसे ही द्वारका के सीमा में पहुंचे तो अपना संत बजाए, संख है सफेद और भगवान के हाथ हैं लाल और होंठ हैं लाल, तो इसको कहा कि जैसे हंस कोई कमल के ऊपर बैठा हो, भगवान के लाल होंठ और लाल हाथ कमल जैसे लग रहे हैं और सफेद संख हंस जैसा लग रहा है, और भगवान ने जैसे उस संख को बजाया है जैसे सोए हुए को या मरे हुए में जान आ जाए, पूरा द्वारका जाग गया और भागता हुआ भगवान के स्वागत के लिए कोई रथ पे चढ़े, कोई घोड़े पे चढ़े, कोई व्याकुल चढ़े, सब सारे बड़े बुजुर्ग छोटे और नगरवासी दोनों तरफ खड़े होकर भगवान का स्वागत करने लगे। भगवान ने किसी को मुस्कुरा कर देखा, किसी से हाथ मिलाया, किसी से गले मिले, और बड़े बुजुर्गों को तो झुक के प्रणाम किया। ऐसे भगवान का स्वागत द्वारका में हुआ है, और स्वागत के बाद भगवान जब अपने महलों में जाने लगे तो भगवान की रानियां भगवान के बाहर जाने के बाद कभी बाहर निकलती नहीं थी, नए वस्त्र पहनती नहीं थी, वो तो एक जगह बैठी हुई थी। उन्होंने अपने पुत्रों को आगे भेजा, भगवान ने अपने पुत्रों को गले से लगाया, रानियों ने उसको ही मान लिया कि हम भगवान को आलिंगन कर रही है। फिर भगवान को कहती हैं, आप बार बार कभी मथुरा जाते हो अपने मित्रों से मिलने, कभी हस्तिनापुर जाते हो, और आप जब द्वार पर नहीं रहते हैं तो हमें कितना जुदाई होती है। तो ऐसे बहुत बड़े भगवान के स्नेह और प्रेम का और द्वारका में आगमन का वर्णन है। इसके बाद परीक्षित महाराज के जन्म की कथा। अब परीक्षित महाराज के जन्म की कथा में पहले तो ऐसे ही लिखा है कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा की, और फिर लिखा है कि जब समय आया तो उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा विष्णुराज, जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने की है, तो विष्णुराज उनका नाम रखा। और पंडितों को बहुत बड़ा दान दिया महाराज युधिष्ठिर के, राज की इतनी महिमा फैल चुकी थी, 3 दिन अश्वमेध यज्ञ हो चुके थे, और देवताओं को पता लगा कि युधिष्ठिर महाराज के राज इतना महान है और वो राज में आसक्त नहीं है, कृष्ण भगवान की हत्या का पालन कर रहे हैं, कोई भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके राज में समुद्र रतन दे रहा है, पहाड़ों के अंदर से सारा खनिज मिल रहा है, वृक्ष फल फूल दे रहे हैं, मौसम टाइम पे आ रही, बहुत अच्छा राज का वर्णन है। और एक परिषद के जन्म के ऊपर महाराज बड़ा ब्राह्मण को दान दिया, गौ दान किया, क्योंकि पहले की बालक है, अभी 5 भाइयों के बीच में एक ही बचा है, ये अंतिम अंकु है पांडु वंश का। और फिर जब पूछा है पंडितों से कि क्या ये बालक हमारे कुल परंपराओं की रक्षा कर सकेगा, और पंडित जी कहते हैं इक्ष्वाकु महाराज जैसा ये प्रजा का रक्षक बनेगा और राम के समान अपने वचन का पालन करेगा, और ये बालक धनुष उठाने में अर्जुन अपने दादा के समान होगा, और संयम में महाराज युधिष्ठिर आपके समान या भगवान विष्णु के समान होगा और दानियों में तो ये बलि महाराज के समान होगा, रंकी देव के समान होगा। ऐसे जितने भी उदाहरण है उन सब की तुलना करके बताया कि ये बालक ऐसा अद्भुत जीवन में इसका होगा, बड़े बड़े चार पुत्र का पिता होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा और इसका विवाह भी होगा पुत्र कुमार की कन्या के साथ। लेकिन एक समय में तक्षक सर्प के द्वारा ब्राह्मण के साप के कारण दशा जाएगा। ये सुन के महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। परंतु ने कहा नहीं, उस वक्त भी इसका कल्याण होगा ऐसे ज्योतिष बता रहा है। अब परीक्षित महाराज छोटे छोटे बड़े होने लगे हैं और बड़े होने लगे हैं तो आंख में ऐसे सबको देखते हैं। परीक्षण का मतलब है जो परीक्षा ले, परीक्षा लेने का मतलब देखिए ये है, वो देखते ही थे कि मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा किसने की थी। वो सबको देख के फिर देखते ये नहीं है, फिर देखते ये नहीं है। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण वैसे ही सब अश्वों में यज्ञ में आए, तीन यज्ञ हुए। तो एक यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और महाराज छोटे परीक्षक बालक तीन साल को उम्र के को लाए सभा में और महाराज की गोद से उतर के बालक जाके श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया और ऐसे टुकर टुकर देखने लगा, मुस्कुरा भी रहा है, देख भी रहा है, फिर ऐसे थोड़ा सा शंका कर रहा है। उस वक्त व्यास देव ने कहा कि महाराज श्री कृष्ण बालक ने आपको पहचान लिया है कि आपने इसकी रक्षा की, और ये समझ रहा है आप ने कि इसको एक शंका है, जब आप गर्भ में गए थे उतरा के तब आपने चार हाथ धारण कर लिए, अब आपके दो हाथ हैं इसलिए इसको चार हाथ दिखा दो। तो भगवान उसको फिर चतुर्भुज रूप कर लिए और जैसे चतुर्भुज रूप किया आप उस बालक ने उसके बाद और किसी को नहीं देखा। तो इसलिए परीक्षण को परीक्षण कहते हैं और अब परीक्षण ने भगवान का जन्म से पहले दर्शन किया, माँ के गर्भ में किया था। बड़े गौरव से कहता था श्री कृष्ण मेरे सहोदर हैं, सहोदर कहते हैं भाई को, उधर कहते हैं पेट को, उसी पेट में आए जिसमें मैं था इसलिए मेरे भाई, भाई को संस्कृत में सहोदर कहते हैं, उसी माँ के पेट में आया है इसलिए मेरा सहोदर है और उसके जन्म से पहले करूँगा। वैसे तीसरे स्कंद भागवत में है कि हम सबको माँ के गर्भ में परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा से जीव बात भी करता है और सौ जन्मों की पता भी लगता है और परमात्मा को प्रार्थना करता है कि हमको इस दुख से अब निकालो, या हम चारों ओर मलमूत्र से घिरे प्लास्टिक की थैली में बंद पड़े हैं और हमको कीटाणु काटते हैं, अब एक बार हमको यहाँ से मुक्त करो, हम आपका सुमरण करेंगे, आपको याद करेंगे, ऐसा सब वचन करके आते हैं। लेकिन जन्म लेते ही रोना शुरू करते हैं हम कि हमको मत हाथ लगाओ, लेकिन कोई कहता है मेरा पोता है, कोई कहता है बेटा है, वो तो जानता नहीं है, कोई हम पकड़ के जबरदस्ती अपना रिश्तेदार बनाते हैं और जैसे बनाते हैं तो फिर आस्ते आस्ते वो उसको खिला खिला के पिला पिला के और उसको जो भगवान का किए वो वचन सब बुला देते हैं। इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जागो, गौरव चंद्र है बोले पिशाचरी माया के गोद में कब तक सोए रहोगे, जागो भाई जागो, जो भगवान से वचन करके आया उसको मत भूलो। श्री चेतन महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र लाए हैं, कलयुग का ये तारक महामंत्र है, इसको मांग के ले लो और अपने जन्म को सफल करो। बहुत बड़ा भाग्य से ये अवसर मिला है, इस अवसर को मत जाने दीजिए। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
सो अभी हम परीक्षित महाराज के जन्म के बाद धृतराष्ट्र का हर ग्रह त्याग का वर्णन आता है और ये कथा ऐसे आती है। अब इस कथा का तीसरे स्कंद से भी, इस कथा का जो संबंध है तीसरे स्कंद से भी है, इसलिए तीसरे स्कंद तक आज पहुंचेंगे अभी तो वो कथा पहले बता देते हैं, दोबारा उसको आवर्ती न हो। ये प्रश्न पूछा गया कि विदुर, जैसे इस और भी इसको आसान करना है तो ऐसे समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे थे तब जो धर्मराज यमराज जिसको धर्मराज कहते हैं जो सबका लेखा चोखा करता है हिसाब किताब रखता है ना वो इस धरती के ऊपर तीन रूपों में जन्म लेकर बैठा था और उस वक्त धर्मराज की जगह के ऊपर पितरों का अधिपति अर्यमा यमराज की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था। यमराज की जगह जगह खाली थी इसलिए अर्यमा जो पितृलोक का अधिपति है वो पितृलोक के साथ साथ यमलोक को धर्म भी देख रहा है। तो ये तीन जन्म कैसे लिए धर्मराज ने तो कथा आती है मांडुक नाम का एक ऋषि था। किसी राजा के अश्व की चोरी हो गई कुछ चोरी हो गई चोर जाके मांडुक ऋषि के आश्रम में छुप गए तो चोरों के साथ कहा कि ऋषि ने इनको शरण दिया ऋषि को भी पकड़ के लाए पकड़ के जब लाए ऋषि को तो सूली की सजा सबको दे दी। सूली ऐसा एक डंडा है ना ऐसे डंडा होता था ऊपर वो बहुत तेज होता था उसके ऊपर आदमी को बिठाते थे और सर के अंदर से निकलता था और वो आदमी तड़क तड़क के मर जाता था तो दिमाग से निकलता था ये सूली। पहले ये सूली की सजा होती थी अब आदमी को नहीं देते लेकिन आदमी को देखना है तो अभी भी बदमाश लोग वो मुर्गी के अंदर सूली की तरह ऐसे डाल के सेकते हुए दिखेंगे बकरे को सेकते हुए दिखेंगे। ये सूली का अभी पशुओं के ऊपर अभी भी सूली का तो चल रहा है ऐसा नहीं खत्म हो गया और लोग उसको शौक से खाते हैं और जीते जीते मछलियों को ऐसे सेकते हुए तड़पती उठाते हैं कैसे इनका क्या होगा कौन से नर्क में जाएंगे समझ में नहीं आता है। पिताजी मर जाए उसकी अस्थियां कहते हैं मंदिर में शिवालय में रख के आओ क्यों कि बोला पिताजी भूत ना हो जाए। पिताजी की अस्थियां तो मंदिर में रखते हैं घर में रहते नहीं है और बकरे की और मुर्गे की हड्डियां जो है वो फ्रिज के अंदर घसेल के दबा के रखते हैं उनसे डर नहीं लगता है कि ये भूत बने क्या हो गया है लोग उनको भाई जंगल में जाके रहो अगर करना है तो जाके शिकार करके खाओ कसाई की दुकान से लेके खाने का किसने आपको बता दिया खाना है तो जाओ शिकार करो हिम्मत है तो मार के खाओ मारने को तो मक्खी मारने में भी हिम्मत नहीं है लेकिन खाने के लिए तो खाना है तो शेर को खाओ वो बेचारी गाय को के बकरी को के और मरा हुआ कभी मुर्गा कभी गोट पे देखा है कहीं मरते ही नहीं है क्या वो सारे मरे हुए पहले से ही मरते हैं उसी को भी चला देते हैं क्या गधा है कि घोड़ा है कुछ मालूम नहीं। अरे कृष्ण वैसे भी लोग वही मांस खाते हैं जो सारे बेचारे वो पशु जो घास खाते हैं और इंसान उसी को खाता है कोई भी ऐसा नहीं है कि शेर चीते को खाता हो बिल्ली को भी कोई नहीं खाता है कुत्ते को भी नहीं खाता है जो मांस खाता है उसको कोई नहीं खाता है जो घास खाता है उसको खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं अरे भाई फर्स्ट हैंड क्यों नहीं फल फूल घास खा लेते हो रिकंडीशन सेकंड हैंड मांस क्यों खाते हो उनका मांस तो घास से बना हुआ है कोई मांस से बना हुआ मांस हो गया तो सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड खाना सेकंड हैंड क्यों खाते हैं लेकिन जो जिसकी इच्छा हो लेकिन आगे आएगा परीक्षण महाराज कलयुग को जगह देगा जहाँ पशु हत्या वहाँ कलयुग का निवास होता है। हरे कृष्ण। सो मांडुक ऋषि को भी सूली के ऊपर बिठाया लेकिन उनको सूली अंदर गई नहीं बस जरा एक अटक गई उसको अणि ऋषि कहते हैं इतनी अटकी और तो सब चापा लेगी क्या हो गया कौन है सूली नहीं जा रही है राजा को समाचार हुआ राजा भागता हुआ था महाराज हमारे सेनकों से अपराध हो गया सिपाहियों से आपको गलती से पकड़ के आए आप क्षमा करें बोला आपका अपराध नहीं है क्या यमराज को पता नहीं लगता कि हमको सजा क्यों दिला उसी दिन यम लोग चले गए यमराज को कहा मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे को सूली पे बिठाया। यमराज ने कहा चित्रगुप्त निकालो इसका लेखा तो चित्रगुप्त कहता है ये जब 3 साल का छोटा बच्चा था तब एक तिनका तेल लेके एक चुनटी को लगाया था उसके बदले में इसको चुनटी जितनी सूली लगी है। मानव ऋषि कहता है 3 साल 5 साल के बच्चे को थोड़ी पता होता है कि क्या कर रहा है उसको उसको दंड देने का नियम बदल दो पांच साल से छोटे बच्चे को दंड नहीं दिया जा सकता, और अगर 12 साल तक बच्चा गलती करता है तो माता पिता को दंड देना चाहिए कि सही शिक्षा क्यों नहीं दी। अभी भी दुनिया का कानून ऐसे ही काम करता है। और यमराज को कहा कि इस धरती पर जाके तो देखो कि पाप से बचना कितना मुश्किल है। तो धर्मराज ने कहा कि धरती पे जाके पाप से तीन जोड़ियों में कोई पाप से बच ही नहीं सकता है। राजा को तो सारी प्रजा के पाप का छठा हिस्सा में भोगना पड़ता है, और कोई शूटर है तो कोई भी काम कराना होगा तो उसको करना पड़ेगा, और कोई चंडाल है तो चमड़ी उतारनी पड़ेगी मरे हुए पशु की, ये तो पाप से बच ही नहीं सकते हैं। आप महाराज मुझे शराब भी दें तो ये तीन मत देना। वो इतना गुस्से में था मांडू ऋषि, बोला फिर ये तीनों आपके जन्म होंगे, आप राजा भी बनोगे, दासी पुत्र भी बनोगे और चंडाल भी बनोगे। अब एक धर्मराज युधिष्ठिर महाराज राजा बने, वो ही दूसरा दासी पुत्र विदुर बना, और उसी समय तीसरा एक वाल्मीकि नाम का चंडाल, दूसरा वाल्मीकि रामायण वाला नहीं, वो वाल्मीकि चंडाल बना। उसकी कथा आती है कि पांडु के राज सूर्य यज्ञ के अंदर कहा कि जब सब भोजन कर लेंगे तो बाहर लगा हुआ बड़ा घंटा बजेगा, तो घंटा बजा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा ये क्या हुआ, बोला एक महात्मा को नहीं बुलाया। बोला कौन सा महात्मा, बोला भीम और अर्जुन आप जाओ, वो जो चंडालों की बस्ती है उसके अंदर एक वाल्मीकि नाम का साधु रहता है, उसको निमंत्रण दे दिया होता है। अर्जुन और भीम गए उस बस्ती के अंदर, देखा तुलसी का पौधा लगा है, साफ घर है, मटका पानी का है, और बैठा जप कर रहा है। कहा कि हम पांडव पुत्र भीम और अर्जुन आए हैं, आपको कल हमारे घर भोजन के लिए पधारना है। बोला किसने कहा, मेरे को बुलाने की क्या जरूरत है। बोला भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसने। बोला भगवान ने तो हम छुप के भगवान का भजन कर रहे थे, उन्होंने हमारा राज खोल दिया। दूसरे दिन बेचारा आया, बाहर खड़ा था, लेकिन रात को भगवान श्री कृष्ण ने सब द्रौपदी को बुलाया, सुभद्रा को बुलाया, सब रानियों को कहा देखो कल एक महात्मा आएगा, आपको जो अच्छे से अच्छा पाठन के लिए आता है बचा के तैयार करके खिलाना है। सारी रात सबने 56 भोग तैयार किए। ये बेचारा बाहर खड़ा था, बोला मुझे कुछ दो मैं जाऊँ। बोला नहीं, महाराज ने कहा अंदर आओ। बोला मैं तो अंदर कैसे आऊँ, मैं तो चंडा लूँ, बाहर मेरे को भोजन दे दो। नहीं नहीं आप अंदर आ जाइए, अंदर चले गए तो बिठा दिया आसन के ऊपर। अब जो उन्होंने 56 भोग परोसे, इन्होंने अपने कटोरे के अंदर चावल भी डाला और खीर भी डाली और दाल भी डाली और करेला भी डाला। एक बार घंट तो भगा, घंटी भगा एक बार, लेकिन फिर घंटी बंद हो गई। महाराज ये भगवान श्री कृष्ण घंटी बजी बंद क्यों हो गई। बोला बंद इसलिए हो गई कि इसी के भोजन करने के ऊपर किसी ने संदेह किया। अब द्रौपदी कहती है हाँ मैंने कहा सारी रात 56 भोग बनाए और ये करेला और खीर साथ खा रहा है, इसको खाना तो आता नहीं, सब गुड़ गोकर कर दिया। बोला इसी से पूछ लो। बोला महाराज आपने ऐसे क्यों किया। बोला भगवान का भोग लगा हुआ था, अभी मैं कोई कहता ये मत दो ये दो तो भगवान के भोग का अपमान हो जाता, सिर्फ अच्छा खाता और कुछ छोड़ देता तो, इसलिए मैं सब इकट्ठा किया जैसा है, भगवान के भोग का अपमान न हो। ऐसे के बाद घंटी तो बजी, लेकिन उसने कहा अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं धर्मराज हूँ, मैं अपना तेज युधिष्ठिर महाराज में समा देता हूँ, अब लोग मेरी पूजा करेंगे और पूजो मैं कोई नहीं चाहिए। तो ऐसे ये चला गया। अब प्रश्न ये उठता है कि विदुर कौन सा विदुर धर्मराज है, व्यास देव का पुत्र है और दासी से पैदा हुआ है, और विदुर धृतराष्ट्र का मुख्य मंत्री है, ये हस्तिनापुर का मुख्य मंत्री था, उसको भी महाराज धृतराष्ट्र जैसा ही घर मिला हुआ था, वैसा ही सारा सम्मान था, बस सिर्फ वो दासी पुत्र को राज नहीं मिलता था, लेकिन राज पुत्र का सारा सम्मान मिलता था, रहना खाना पीना राजाओं के समान था। तब तीसरे स्कंद में ये प्रश्न आता है कि विदुर ने अपना घर क्यों छोड़ा, वो कोई सामान्य घर नहीं था, ऐसा घर जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण मेहमान बिन बुलाए बन के आए, और जिन्होंने विदुरानी के हाथ के केले के छिलके खाए, और जो विदुर के हाथ का जना हुआ सब्जी को खाए और विदुर के गोद में सर रख के सोए, ऐसे घर को छोड़ा क्यों विदुर ने? आदमी सामान्य घर नहीं छोड़ता है, ये तो भगवान जिस घर में रहे उसको छोड़ा क्यों? तब कहते हैं कि एक दिन रात को धृतराष्ट्र महाराज ने विदुर को बुलाया, विदुर को बुला के कहा कि अब मैं क्या करूं, पांडवों का पता लग गया है, पांडवों को आधा राज देना पड़ेगा और मेरा बेटा दुर्योधन मानता नहीं है। तो उस वक्त विदुर ने कहा, महाराज दुर्योधन कुल घातिक है, सारे कुल का विनाश करेगा, आप इसके मोह में फंस गए हैं और अगर उंगली खराब हो और उसकी वजह से सारे शरीर को खराब होने का खतरा है तो उंगली काट देनी चाहिए, अगर हाथ खराब हो और शरीर में मरने का खतरा है तो हाथ काट दे क्या? ऐसे ये इस वक्त आपके हाथ में नासूर है, इसको काट दीजिए, निकाल दीजिए। उस वक्त प्रवेश किया दुर्योधन, उसके साथ ये चंडासों की चोपड़ी, चारों के चार अंदर आए, दुर्योधन, मामा शकुनी और दुशासन और पर। ये मामा शकुनी कहां से आया था? काबिल कंधार से आया था, ये पहला आतंकवादी भारत में आया। ये मामा शकुनी महाभारत कराने में सबसे बड़ा हाथ मामा शकुनी है, भगवान ने यूज किया उसको। वो अपने पिता महाराज सुबल के हड्डियों के पासे लेकर आया था, आप तो खेलते हैं कभी तो पासे में छह साइड होती है ना, उसमें तीन चार दो तीन है, वैसा पासा बना के आया था कि इससे मैं, अब हम लड़ तो सकते नहीं है भीष्म पितामह से, वो तो मेरी बहन को अंधे धृतराष्ट्र से शादी करने के लिए के लेके आ गया, मैं दहेज में साथ जाता हूँ और इनके सारे कुल का विनाश कर दूँ। तो शकुनी तो ऐसे आया हुआ था, अंदर आते ही दुर्योधन ने कहा, काका तुम हमारे नमक खाते हो और हमारे खिलाफ बोलते हो, आपका सर काट देना चाहिए, लेकिन हम हमारे रिश्तेदार है इसलिए अब निकल जाइए यहाँ से अभी इसी वक्त। दुर्योधन ने उसका अपमान किया लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहा, कुछ बोला नहीं, अपने मुख्यमंत्री का अपमान और चुप का मतलब है वो बेटे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था, बेटे की बात में हाँ मिला दिया। और विदुर ने कहा ये अपमान भगवान मिलाएगा, अच्छा हुआ मैं भाइयों के लड़ाई को देखने से बच जाऊंगा, धनुष बाण को दरवाजे के ऊपर रख दिया, कहा मैं दल नहीं बदलूंगा, यहाँ से अपमान हुआ तो पांडु की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अब यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ। और विदुर तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, अपना वेश साधु जैसा बना लिया है, सारे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया है, प्रभास केंद्र भी गए हैं, द्वारका भी गए हैं, और फिर तीसरे स्कंद में ये आएगा कि वृंदावन में जमुना के किनारे विदुर जी और उद्धव का मिलन होता है। और उद्धव से विदुर पूछता है कि आप द्वारका से आ रहे हो, कैसे वसुदेव देवकी का क्या समाचार है, बलराम ठीक है, सब यदुवंशी ठीक है, श्री कृष्ण का क्या समाचार है? उद्धव कहता है किसका पूछ रहे हो, हम यदुवंशी कृष्ण को पहचान नहीं सके, जब हमारे साथ थे आज वो कृष्ण चंद्र धाम से चले गए हैं, और फिर तो विदुर को श्री कृष्ण की सारी वृंदावन की लीलाओं का धारावाहिक स्मरण हुआ, पूतना के विष पिलाने से माँ का स्थान देने से लेकर मथुरा की लीलाओं का वर्णन करते करते कहा कि अंत समय भगवान श्री कृष्ण ने मुझको ये सेवा दे दी थी कि मैं बद्री का आश्रम जाऊं और मेरे जाने से पहले मुझे भागवत का उपदेश किया। विदुर कहता है वो उपदेश मुझे भी सुना दो विदुर, भाई उद्धव जी मुझे वो उत्सव सुना। उद्धव कहते हैं तो मर्यादा है, विदुर बड़े हैं मैं छोटा हूँ, और कहते हैं विदुर जी जब भगवान श्री कृष्ण अंत समय वीरावल नाम का गांव है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे, जब ग्यारहवें स्कंद में कथा आएगी आखिरी दिन में, तो वहां भगवान श्री कृष्ण जब बैठे हैं तो उद्धव को उपदेश दे रहे हैं पूरा 24 अध्यायों में, उसका नाम है उद्धव गीता। और उसके बाद उस वक्त मैत्रेय ऋषि वहां आते हैं और मैत्रेय ऋषि को कहते हैं कि आपके पास विदुर आएगा, उसको आप यही उपदेश सुनाना। और फिर दारुक आता है जिसको कहते हैं आप तत्काल जाओ द्वारका में, अर्जुन को कहो मेरी रानियों को लेके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मेरे अपने धाम जाते ही सारी द्वारका को समुद्र वापस दे। तो तीन व्यक्ति भगवान से आकर में मिले हैं, एक उद्धव, एक मैत्रेय ऋषि और एक दारुक, बस और कोई नहीं। तो यहां से विदुर मैत्रेय ऋषि से मिलने के लिए हरिद्वार जाता है। हरिद्वार में तीसरा और चौथा स्कंद मैत्रेय विदुर संवाद है। और जब वो अपने जन्म को सार्थक कर लिया तो उसने ये निर्णय किया कि अब मैं किसका भला करूं। बोला मेरे भाई धृतराष्ट्र का भला करना। इसलिए कहते हैं साधु किसी से द्वेष नहीं करता। जिस घर से अपमानित होके निकले थे पहले उसी का भला करने के लिए। साधु किसी का बुरा नहीं मानते हैं, जिस घर से अपमानित होके निकले थे उसी घर में उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए आए। ध्रुव महाराज जिस माँ सुरुचि ने अपमान किया था भगवान के दर्शन के बाद पहले उसी माँ को प्रणाम किया। और भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास से लौटे तो पहले केकई के कक्ष में जाके प्रणाम किया, फिर कौशल्या के पास गए। तो भगवान और भगवान के भक्त किसी से द्वेष नहीं करते। अब विदुर जी वापस लौट के आए हैं हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमारे तो जीवन वापस मिल गया हमको, हमारे तो पिता छोटी उम्र में चले गए थे, आपने हमारे को आंखों को जैसे पलकें रक्षा करती हैं ऐसे आपने हमारी रक्षा की थी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप वापस आ गए हैं, अब आप हमको छोड़ के मत जाइए। और दिन में तो बैठ के रोज विदुर तीर्थों की कथा बताता था और सब सुनते थे। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी आप चलते फिरते तीर्थ हो, तीर्थों पे जाते हैं तब पवित्र होते हैं, लेकिन आप घर में आके पवित्र करते हैं, तो आप तो चलते फिरते तीर्थ हैं, लेकिन रात को अकेलाई में धृतराष्ट्र महाराज को कहते हैं कि महाराज पहले दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे, अब फिर रात में क्यों बैठे हो। महाराज कहता है देखो पहले वो तो खराब था लेकिन अब तो मुझसे पूछने के बगैर कोई काम ही नहीं करता है, महाराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा से चलता है। विदुर कहता है पहले बुरे बच्चे में मोह था अब अच्छे में मोह है, मोह तो दोनों मोह है, लेकिन तुम यहां कब तक रहोगे। फिर कहा कि तुम भीम जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों की हत्या की है उस भीम के टुकड़ों के ऊपर जैसे कुत्ते को टुकड़ा देता है कोई ऐसे तुम्हें डालता है वो तुम खा रहे हो, कहा करूं मैं देख नहीं पाता हूं कहां जाऊं, आप कहां कहां गए थे। बात को बदलने लगा तो ऐसे शिक्षा की कथा बताते हुए कहते हैं मानो विदुर ने कहा कि मैं वन में घूम रहा था तो मैं अचानक देखा कि एक व्यक्ति 5 हिंसक पशु उसके पीछे लगे थे, वो भाग रहा था और भागते भागते आगे एक डायन उसका गला दबोचना चाह रही थी, वो तीनों से भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। महाराज ने बोला पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो बच गया। बोला हाँ पेड़ के ऊपर चढ़ गया, सब नीचे खड़े हुए थे ऊपर चढ़ नहीं पाए। और उसने ऊपर से डाली से देखा तो नीचे बड़ा भयानक कुआं था और कुएं के अंदर इतना बड़ा अजगर मुंह खोल के बैठा था, बोला गिरेगा तो अजगर खाएगा मर जाऊंगा। और तब देखा तो जिस डाली के ऊपर बैठा था उसको चूहे काट रहे थे कुछ काले सफेद, बोला ये डाली तो अभी कटेगी और मैं गिरूंगा तो कुएं में मेरे को अजगर खाएंगे मार देगा, उतरूंगा तो ये पशु खाएंगे नहीं तो ये जो चुड़ैल खा जाएगी। तब तक अचानक ऊपर के डाली के ऊपर नजर गई और एक वहां छत्ता था मधुमक्खी का, और उसमें से कुछ मधु टपक रही थी, वो उसको चाटने लगा। युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, ऐसा कौन मूर्ख है, चारों ओर मृत्यु है और फिर मधु खा रहा है। बोला महाराज वो आप हो, आप हो महाराज, ये पांच पशु काम क्रोध मोह लोभ तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, ये डायन चुड़ैल बुढ़ापे ने अब तुम्हारे बाल सफेद किए, दांत गिर गए, कान से सुनते नहीं हो, आंख से पहले से भी देखते नहीं हो, अब घुटने काम नहीं करते हैं और मृत्यु रूपी अजगर इंतजार कर रहा है, दिन रात काले और सफेद चूहे तेरी उम्र को काट रहे हैं और तुम अभी भी यहाँ बैठ के मधु खा रहे हैं। बोला नहीं नहीं, बोला चलो कैसे चलूं, बोला मेरा हाथ पकड़ लो। अब आधी रात को धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ा है विदुर का, तब गांधारी कहती है कि पति मुझे मत छोड़ के जाओ, मैंने आपकी वजह से आंखों के ऊपर पांती बांध रखी, अब अंत समय जब जा ही रहे तो मुझे साथ ले लो। आगे विदुर, विदुर के कंधे के ऊपर धृतराष्ट्र का हाथ, धृतराष्ट्र के कंधे के ऊपर गांधारी का हाथ, और ये रात रात में निकले हैं हस्तनापुर से उत्तर दिशा की तरफ। समा उठ के महाराज युधिष्ठिर प्रणाम करने गया तो न विदुर मिला न महाराज मिला, तो कह रहा है कहाँ चले गए, ढूंढो चारों ओर से, ढूंढने से कहीं मिले नहीं, पूछा कहाँ चले गए, आपको मालूम है संजय, बोला मेरे स्वामी मुझे बगैर बताए चले गए हैं। अभी नारद आके कहता है आप मत ढूंढने का प्रयास करो, वो उत्तर दिशा में गंगा जी के तट पे पांच दिन के बाद धृतराष्ट्र महाराज योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग देंगे और उसी के अंदर गंधारी सती हो जाएगी और विदुर भी वहां अपना शरीर छोड़ देंगे। लेकिन महाराज समय सबके ऊपर आता है, आपको भी सावधान होना रह चाहिए, ऐसे नारद बता के चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का समाचार आता है। युधिष्ठिर महाराज कहता है भीमसेन इतने अपशुकन होने रहे लग रहे हैं, गाय के आंखों में आंसू दिख रहे हैं, मैं कहीं जाता हूँ तो रात को कौवे कौ काम कर रहे हैं और जयकाल जयकाल बोल रहे हैं, गीदड़ उड़ा रहे हैं, ये वो क्या गया है, अब सुकन चरण और हो रहे हैं, कब से अर्जुन चला गया है, श्री कृष्ण से द्वारका में समाचार उसने वापस आया नहीं है, ऐसी चिंता कर रहे हैं महाराज। इतनी देर में अर्जुन प्रवेश करता है, बेचारा बहुत दुखी है, बाल बिखरे हुए हैं, अस्त व्यस्त है और आते महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज कहते हैं पर तुम्हारा ये आंख कैसे, क्या तुम क्षत्रिय होते हुए किसी ने दान मांगा दे नहीं पाए इसलिए दुखी हो, क्या बराबर वालों के साथ भोजन नहीं कर किसको कराया, किसी बूढ़े बुजुर्ग की रक्षा नहीं कर पाए हो, ऐसे कई कारण जिसके कारण क्षत्रिय को दुख होना चाहिए वो सब पूछने का बात पूछे, द्वारका में तो सब कुशल है, हमारे सुहृद श्री कृष्ण ऐसे आखिर में नाम कृष्ण कर लिया सबका लेने के बाद, तब तो अर्जुन इतनी देर तक तो बैठे थे वो कहते जिस किसका नाम ले रहे हो, जिसकी वजह से मैं सर्वश्रेष्ठ धन धर था, जिसकी वजह से द्रौपदी को जीता, जिसकी वजह से मैं पूरे महाभारत के युद्ध के अंदर भीष्म और द्रोण और कर्ण से लड़ा, आज मैं वही अर्जुन वही गांडिव रास्ते से श्री कृष्ण की रानियों को ला रहा था और कुछ जंगली वीर कौरव ने मुझे हरा के लूट लिया, अब मेरी जो शक्ति थी जो भगवान को सेवा लेनी थी तब तक ले ली, अभी उसने वो सब वापस ले ली है। और उस वक्त भगवत गीता की शिक्षा को याद करके अर्जुन फिर अपने आप को संतुलन में लाता है और महाराज युधिष्ठिर कहते हैं ये मुकुट श्री कृष्ण ने दिया था, राज उसकी वजह से कर रहे थे, अब श्री कृष्ण नहीं है तो ये राज मैं नहीं करूँगा। और तब भीमसेन ने अपना मुकुट नीचे रखा कि भाई आप राज नहीं करोगे तो हमको राज करने के लिए मत बोलना। नकुल सहदेव ने मुकुट नीचे रखा, अर्जुन तो पहले पहना हुआ ही नहीं था। पांचों भाइयों ने कहा हम राज नहीं करेंगे, श्री कृष्ण ने राज दिया था, 33 साल पूरे होने वाले हैं और अब श्री कृष्ण गए गए 33 साल हमने राज किया और कृष्ण नहीं तो राज नहीं करेंगे, हमें राज का लोभ नहीं, कृष्ण की आज्ञा का पालन था। ये पांच भाइयों की एकता का महाभारत का ग्रंथ है कि कोई राज करने, और चार रामायण में भी जब राम जी ने कहा कि लक्ष्मण नहीं रहे तो मैं नहीं रहूंगा तो भरत ने कहा मुझे राज के लिए मत बोलना, शत्रुघ्न को मथुरा से बुलाया गया और उसने कहा कि मैं आपको इनकार करके और पाप का भागी नहीं होना चाहता हूँ, राज के लिए मुझे भी मत कहना, चारों भाई साथ रहना चाहते हैं। दोनों महाभारत और रामायण में भाइयों के ऐसा संगठित प्रेम का वर्णन है, किसी कारण से अलग नहीं हो पाए। न राज के लिए लड़े हैं, न दुनिया में पांच पत्नी, पांच पांडवों की एक द्रौपदी पत्नी थी। और नारद ने एक दिन आके कहा था, देखो स्त्री के कारण झगड़ा होता है, आप कोई नियम बना लो और आपको भगवान की सेवा करनी है, ऐसा ना हो। उन्होंने नियम बना लिया था कि दो वर्ष एक के साथ रहेगी द्रौपदी, तब दूसरा कोई उससे बात भी नहीं करेगा। तो उसमें भी कभी झगड़ा नहीं हुआ उनके बीच में, तो इतना बड़ा। और उस वक्त सबने ऐसे कहा, तब कुंती महारानी कहा कि अर्जुन आया, जब आता है तो मुझे पहले प्रणाम करता है, आज अंदर क्यों नहीं आया, क्या हो गया अर्जुन को? किसी ने कहा श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का समाचार और कुंती महारानी के प्राण निकल गए, कृष्ण नहीं रहे तो प्राण नहीं रहेंगे, मदगत प्राणा। ऐसे भक्त भगवान का दर्शन नहीं, नाम नहीं, कीर्तन नहीं, तो काय के लिए प्राण रखें, जी के क्या करें? और अब ऐसी स्थिति में किसको राज दिया जाए? तब कुल गुरु कृपाचार्य को कहा कि आप परीक्षित महाराज को राज तिलक कर दो। अब परीक्षित कहता है मैं छोड़ा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? और पांडवों ने वीर संन्यास ले लिया और पांचों पांडव और द्रौपदी अब हिमालय की तरफ सर आरोहण करने के लिए निकल गए, इसको वीर संन्यास कहते हैं। अब महाराज परीक्षित राजा बना। महाराज परीक्षित के राज का वर्णन आता है कि बहुत बड़ा राज उनका, समृद्धिशाली राज था, एक छत्र राजा थे। और एक समय वो दिग्विजय करने के लिए गए। कल आपको कथा बताई थी कि परीक्षित महाराज जब हस्तिनापुर के राजा बने तब मथुरा का राजा वज्रनाभ को बनाया, लेकिन उस वक्त मथुरा में कोई जनता नहीं थी, तो इसलिए महाराज परीक्षित ने कुछ अपने यहाँ से सेठ और काम करने वाले मथुरा में बसाए, और भगवान की लीला के स्त्रियों के मंदिर बनाने का कार्य हुआ तो फिर मथुरा मंदिर बसने लगा। तो वहाँ जब कथा सुन रहे थे उद्धव जी से, तो अभी तो कथा का महत्तम चल रहा था, तो संदेश आया कि महाराज कुछ आपकी आवश्यकता है, राज में चली। तो उस वक्त महाराज परीक्षित कथा को आदि छोड़ के दिग्विजय के लिए चले गए। दिग्विजय कहते हैं सब दिशाओं के ऊपर विजय करना, दिग्विजय। पहले एक तो राजा दिग्विजय करते थे, एक पंडित दिग्विजय करते थे। पंडित हाथी के ऊपर चढ़ के पोथियाँ लेके घूमते थे और कहते थे कोई हमारे से शास्त्र अर्थ करे। तो ऐसे बहुत दिग्विजयी पंडित भी दिग्विजयी होते हैं और क्षत्रिय भी दिग्विजय होता है, सारी दिशाओं में जाता है अपने सेना के साथ, या तो हमारी आप हार मान लो नहीं तो लड़ाई, तो उनको दिग्विजय कहते हैं। तो महाराज जब दिग्विजय कर रहे थे, जहाँ जहाँ गए लोगों ने पांडवों के राज की इतनी महिमा गाई, रात को अभिनय करके पांडवों के दिखाए, महाराज परीक्षित कह रहे थे प्रसन्न हो गया कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं और प्रजा को कितना सुख दिया है। यहाँ ये संकेत मिलता है, आप जो बड़े बुजुर्ग हो, कोई अच्छा कार्य करके जाते हो, कोई मंदिर बना दिया, कोई धर्मशाला बना दी, कोई अनाथ आश्रम बना दिया, तो भविष्य में आपके बच्चों को बड़ा गौरव होगा, नहीं तो धन तो सबका यही रह जाएगा, किसी के साथ जाएगा नहीं, लेकिन अच्छा किया हुआ काम अमर हो जाए। आज भी हम कहीं जगह कि इसी साल में फेबरवरी में लाहौल से आ रहा था, तो अभी भी वहाँ जो वो गंगाराम हॉस्पिटल तो उसी नाम से पड़ी है, वो जो जो रोड है तो ये हरबंस रोड है, तो हरबंस रोड है, तो अच्छे आदमी ने जो काम किया अभी भी जहाँ है वहाँ ऐसे ही पड़े, तो अच्छा काम किया हुआ कभी खराब नहीं होता। तो हमको कैसे भी धर्म के काम में बढ़ चढ़ के आगे भाग लेना चाहिए। हम तो कहते हैं कोई भाग्यशाली भगवान एक पुस्तक लेके घर में रख देगा, बच्चे कभी उसको पढ़ेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, तो कहेंगे हमारे बुजुर्ग अच्छा किया कि घर में गीता भागवत रख के गए। ये सब लेके रखने की हमारे को सेवाएं करनी चाहिए, ये भार नहीं है, ये बहुत बड़ा भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए गौरव का सामान है। तो एक इस दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित एक ऐसे स्थान पे आए, उनको आश्चर्य लगा कि एक दुबली पतली गाय आंखों से आंसू बहा रही थी, और एक बैल एक टांग के ऊपर खड़ा था, तीन टांगे आधी कटी हुई थी और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित को इन बैल और गाय की भाषा समझ में आती थी। बैल पूछ रहा थे कि गाय क्या ये लोग तुम्हारे बच्चों को काट के खाते हैं, इसलिए तुम रो रही हो? क्या तेरे बच्चों के लिए दूध नहीं छोड़ते हैं? सभी लालची तुम्हारे को काटते हैं, इसलिए रो रही हो? और गाय पूछती है कि तुम्हारे तीन पांव किसने काटे? असल में गाय की पृथ्वी जिसके ऊपर धर्म अधर्म और अत्याचार के कारण दुखी थी, और बैल था धर्म जिसकी तीन टांगें टूटी हुई थी। और इतनी देर में अचानक महाराज परीक्षित ने पूछा कि धर्म तुम्हारा ये हाल किया किसने? बैल से पूछा कि तुम्हें किसने किया? बोला कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, हर एक अपने कर्मों का दंड भोगता है। कहा कि तुम सामान्य बैल नहीं हो सकते हो, तुम्हारे को कोई पीटा काटा और तुम उसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहे हो, तुम निश्चित धर्मराज हो। इतनी देर में देखा कि उनके पीछे काला कलूटा राजा का वेश पहना हुआ एक दुष्ट डंडा लेके और बैल के पांव को काट रहा है। और कटते हुए बेवबार बैल के पांव को जैसे देखा, महाराज ने अपनी तलवार निकाली, बोला दुष्ट तुम कौन है? क्या समझता भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अभी भी हस्तिनापुर की भूमि के ऊपर सुरक्षित है? पांडवों के राज के अंदर मैं उत्तराधिकारी हूं और आप यहाँ गाय और बैल, ये दोनों हमारे रक्षा के माता, गाय को माता हम मानते हैं और बैल हमारा पिता है, खेती करके अनाज उत्पादन करता है, इनको मारने वाले तुम कौन हो? तो उसने एकदम सारे मुकट मुकट नीचे फेंक दिए और हाथ जोड़ के कहता है मेरे को शर्म है, मैं आपके शरण में हूं, मेरे को जीवन दान दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं, मेरा समय तो मेरा पहले भी आ गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्योंकि यहां धरती के ऊपर थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब मेरा समय आ गया। महाराज ने कहा कि तुम हमारे राज में नहीं रह सकते हो, महाराज कोई जगह तो रहने को दो। तो महाराज ने कहा जब पशु हत्या होती है मांस आहार होता है, कल जो तुम जाके वहां रहो। बोला महाराज आपके राज में ये नहीं होता है, स्थान कोई दूसरा दे दो। बोले जहां जुआ होती है वहां जाके रहो। बोला महाराज ये भी जगह नहीं मिलेगी। बोले जहां भी विचार होता है वहां जाके निवास स्थान करो। बोला महाराज आपके राज में ऐसा भी नहीं, तो फिर जहां नशा होता है सुरापान होता है वहां जाके रहो। महाराज आपके राज में ये भी नहीं मिलेगा, कहां जाओ? चार जगहें कलयुग को रोने के लिए रहने के लिए महाराज ने महाराज परीक्षण दिए। असल में क्या, जैसे ये खंभे हैं ना, खंभों के ऊपर ये मंदिर खड़ा है, ऐसे धर्म चार खंभों के ऊपर खड़ा होता है। जो बैल के चार पैर हैं, बैल धर्म है, उसके चार खंभे हैं, चार खंभे धर्म के हैं, सत्य दया तपस्या और पवित्रता। सत्य दया तपस्या और पवित्रता ही धर्म के स्तंभ है। अब ये स्तंभ नाश कैसे होते हैं? दया जाती है पशु हत्या और मांसाहार से, पवित्रता जाती है विचार से, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध हो तो पवित्रता चली जाती है, और तपस्या जाती है नशा करने से और जुआ करने से सत्य जाती है। चार अधर्म धर्म के चार स्तंभों का विनाश करते हैं। तो परंपर जी महाराज ने जब पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार किया तो उनका कहा धर्म के रास्ते में चलने के लिए पहले चार नियम का पालन करना है, कोई नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, विवाह से पश्चात कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं रखना और जुआ नहीं करना। तो ये अपनी तरफ से नियम नहीं बनाए, ये भागवत के धर्म के रक्षा के नियम है और ये तपस्या है। जैसे लाल बत्ती रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करने के टाइम खराब के लिए नहीं होती है, एक्सीडेंट से बचाने के लिए होती है, ऐसे ही ये चार नियम हमारे को मानव जन्म से कहीं कुत्ते बिल्ले सुअर के जन्म में न चले जाएं, इसलिए धर्म के नियम पालन। अब धर्मराज युधिष्ठिर को कहता है कि महाराज, परीक्षित महाराज को कहता है कलयुग महाराज के चार जगह तो मिलेंगे नहीं आपके यहाँ, कहाँ जाए? महाराज ने कहा जहाँ सोना धन जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ तुम निवास करो, जहाँ धन इकट्ठा होगा वहाँ झगड़ा होगा। कहते हैं पानी खड़ा होगा तो डुबो देगा, धन खड़ा होगा तो लड़ाई करेगा, और साधु कहीं बैठ गया तो उसको आसक्ति हो जाएगी। साधु रमता भला किसी आश्रम में बैठ के फिरके नहीं तो अच्छा। पानी चलता होगा तो किसी को प्यास भी बुझाएगा, खड़ा होगा तो गंदा भी होगा डुबा भी देगा, और धन सेवा में नहीं लगा तो झगड़े का कारण बनेगा। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े धन के ऊपर होते हैं, और घर में बाप बाप बेटे के अंदर भी झगड़ा होता है। और तो ये धन कलयुग तो के रहने का स्थान दे दिया। और इसके बाद ऐसी कथा आती है कि एक समय महाराज परीक्षित अपने सारे साथियों के साथ मृगया करने के लिए जंगल में गए, साथियों से अलग हो गए बहुत प्यास में, और संजय ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तो संजय ऋषि समाधि में थे, महाराज को क्रोध आया कि राजा का सम्मान नहीं किया, मरा हुआ सर्प पड़ा था उनके गले में डाल, और महाराज वहां से वापस लौटने लगे। अब यहां ये ध्यान देने का है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं कथाकार आपको कहेंगे कि महाराज परीक्षित के सर के अंदर सोने का मुकुट था, उसके अंदर कलयुग ने प्रवेश किया। ये सही नहीं, ये सही इसलिए नहीं है कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को शरण दिया था, कलयुग उनके मुकुट में बैठने का साहस नहीं कर सकता, और महाराज परीक्षित भगवान का भक्त है और उसके ऊपर कभी भी कलयुग प्रभाव नहीं। तो फिर कलयुग ने किसके ऊपर आक्रमण किया? महाराज परीक्षित को क्रोध क्यों आया? तब कहते हैं ये भगवान भागवत के अवतार की भूमिका है, जैसे वसुदेव और द्रौपदी को कंस जेल में क्यों ले जाएगा, तो भगवान के माता पिता है उनको, उनके छह बालक कैसे मारे जाएंगे, ये भूमिका है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की। तो भागवत के अवतार की भूमिका है, न कोई न तो परीक्षित को क्रोध आ सकता है, न ही ऋषि को कोई दुख उससे होना चाहिए। महाराज परीक्षित जैसे बाहर निकले कहा मुझे क्या हो गया, मैंने ऋषि का अपमान क्यों किया, अरे ब्राह्मण का अपमान तो कुल का विनाश करने वाला है, हे भगवान मुझे दंड दे दीजिए, मेरे कुल की रक्षा कीजिए, पश्चाताप कर रहे। लेकिन संयम के गले में सांप मरे हुए को देखते कुछ बच्चे ब्राह्मण अलोज भागते हुए गए, उनके बेटे श्रृंगी को स्नान कर रहा था नदी में, कहा श्रृंगी श्रृंगी महाराज ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, अपने पिताजी से पूछा तक नहीं, हाथ में जल लिया, और उस वक्त कलयुग ने श्रृंगी के माथे में घुसा। कलयुग ने किसके ऊपर प्रभाव डाला? श्रृंगी ऋषि को। छोटा बच्चा था, ब्राह्मण का बच्चा था, शक्ति थी, लेकिन अभी तक पक्का नहीं था कच्चा। आशीर्वाद श्राप देने वाला ब्राह्मण अच्छा नहीं माना जाता है। उसने कहा आज के 7 दिन के बाद तक्षक सर्प महाराज को डसेगा। ये महाराज इतने अपमानी हो गए, ऋषि जब वो स्वस्ति वाचन करके सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं तभी राजा बनते हैं, आज ये राजा संतु का अपमान कर रहे हैं। अब जैसे बच्चा वहां पर भागता हुआ आश्रम में आया है, पिताजी रोने का आवाज सुन के जाके जाओ महाराज को जाके ये संकेत कर दो कि मेरे अनजान बच्चे ने आपको शराब दे दिया है, 7 दिन में तक्षक सर्प आपको काटेगा, आपका कल्याण हो। अब ब्राह्मण का बच्चा भागता हुआ यहाँ से आया है, महाराज परीक्षित घर में प्रवेश कर रहे हैं, किसी ने कहा समय कृषि का शिष्य ब्रह्मचारी दरवाजे पे खड़ा है। महाराज वहां से वापस लौट के आए, बोला बेटा मुझसे अपराध हो गया आपके गुरुजी का। बोला गुरुजी ने कहा है कि मेरे एक अनजान बच्चे ने शराब दे दिया है, 7 दिन के बाद आप तक्षक सांप के द्वारा डसे जाओगे, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर बच्चा वहां से लौटा। महाराज परीक्षक अंदर नहीं गए, मैंने वहीं खड़े होके कहा, सुनो घर वालों, मेरे बेटे जन्मेजय को राजा बना दो। और महल को नहीं देखा, रानियों को नहीं देखा, खजाने को नहीं देखा, ये आदेश गुरुजनों को देके गंगा जी के तट पे आ गए। और गंगा जी के तट पे आए तो सारे विश्व में ये है, ये खबर फैल गई कि महाराज परीक्षित राज का परित्याग कर दिया, महाराज गंगा के तट पे बैठे अनशन करके। सारे ऋषि ब्रह्मांड के, वही सारे ऋषि, व्यास देव भी आया, पराशर भी आया और नारद भी आया, अत्रि अंगिरा, सब ये ऋषि आके बैठे हैं और सबको परिषद पूछते हैं कि भगवान विष्णु की कथा बताओ, मेरा अंत समय है, अब मैं जल पान नहीं करूंगा, अगर प्यास लगी होगी तो अभी पानी तो पीते ना, 7 दिन पानी नहीं पिया परिषद ने, पानी नहीं पिया, फिर कथा का अमृत नहीं पिया। कहता है कि अंत समय क्या करना चाहिए, तो कुछ कौन कहने लगे कि दान करना चाहिए, कुछ कहते यज्ञ करना चाहिए। इतनी देर में पहली बार परीक्षित महाराज सामने देखते हैं तो एक नव युवक 15-16 साल का नगन अवस्था दिगंबर में आ रहा है, सांवला सा है, और कुछ लड़कियां और लड़के उसके पीछे पत्थर फेंक रहे हैं, समझ रहे हैं कोई पागल है। लेकिन उसको देख के सारी सभा उठ के खड़ी हो गई, देख व्यास और नारद को छोड़ के महाराज ने उठे तो सब बच्चों ने और लड़कियों ने समझा ये कोई सामान्य पागल नहीं है, और जिसको कोई पहचान नहीं पा रहा था वो सुखदेव गोस्वामी, वो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके कृपा करके कृष्ण की कथा सुनाने के लिए जैसे पहुंचा है, सबने उसका सम्मान किया है। ये पहले स्कंद में 12 अध्यायों में परीक्षित के कुल और परीक्षित की महिमा है कि कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए। 1 अध्याय में सुखदेव महाराज का प्रकट्य है। तो ये अंतिम अध्याय, सुखदेव महाराज जैसे आए हैं, महाराज परीक्षित ने कहा हम राजाओं के घर, आप जैसे वृत्त चूड़ामणि आ जाए ये हमारा सौभाग्य है। मैं समझता हूँ हमारे गुण नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज पांडवों से कृष्ण की बहुत बड़ी मैत्री थी, ये तो आपको कृष्ण ने ही कृपा करके भेजा है। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि सब लोग सब समय सब जगह ऐसा क्या करें कि सबका भला हो, और जिसका मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। यह पहला स्कंद समाप्त होता है और दूसरे स्कंद में 10 अध्यायों में परीक्षित महाराज के प्रश्न से इतने सुखदेव महाराज प्रसन्न हुए, कहते धन्य थे प्रसन्न, आपका प्रसन्न वरेण्यम, इतना मान है, अपना मृत्यु सर के ऊपर खड़ी है लेकिन सबके भले का पहले सोच रहे, महाराज धन्य है आप, सब लोगों का सब समय कैसे कल्याण हो ये पहले पूछ रहे हो और अपने लिए बाद में पूछ रहे हो। आप पूछ रहे तो क्या करना चाहिए, अरे संसार के मूल रूप को पढ़ने के लिए बहुत से रोज न्यूज़पेपर और डाइजेस्ट और कहानियों की कथाएं आती है, ये तो अपना समय दिन भर भागा दौड़ी करके धन कमाते हैं, रात को या तो मुर्दे की तरह सोए रहते हैं नहीं तो भोग करते रहते हैं। भाग्य से जिसको, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, सब लोग अगर आपका कल्याण चाहते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो कहते तस्माद इसलिए हे भरत, हे महाराज भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ सर्वात्मा ईश्वरो हरि भगवान, 4 शब्द भगवान के लिए बोले कि जो सबसे प्रेम करता है भगवान को, और कैसा भगवान बोले जो सबका ईश्वर है सबका पालन पोषण करता है, बोला तीसरा कैसा भगवान, बोला हरि जो सबका दुख हर लेता है, और भगवान जो सबको भाग्य सबके भाग्य जगा देता है, अरे धन होता है उसको धन्यवान होते हैं, उसको धनवान कहते हैं, और जिसके जीवन में भगवान है वो भाग्यवान होता है, उसका श्रोतव्य उसके बारे में कथा सुननी चाहिए, कीर्तत्व उसकी कीर्तन करना चाहिए, और स्मृतव्य और दोनों काम नहीं हो तो भगवान के नाम का सुमरण करना चाहिए। यदि इच्छति अभयम्, अगर भय से मुक्त होना चाहता है तो आइए 10 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद बच्चों का ड्रामा 6:30 बजे शुरू करेंगे, गायत्री गायत्री आई दिख रही थी, गायत्री हरे कृष्ण देन्स गायत्री, कीर्तन 10 मिनट्स कीर्तन गायत्री हरे कृष्ण धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो कल पूछ सकते हैं, हमको आज तीसरा स्कंद पूरा करना था लेकिन शुरू कर दिया तो कल थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण गायत्री हरे कृष्ण।